परमेश्वर, एक क्षण के लिए हम अपने झुके हुए सिरों के साथ खड़े रहें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह की हर चीज के लिए धन्यवादित हैं जो तूने हमें दी है। हम तेरी किन्हीं भी आशीषों के लिए योग्य नहीं हैं। निश्चय ही ये हमारी योग्यता से अधिक आशीषें हैं जो हम लेते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ निरंतर हैं, भीतर आते हुए और आत्मा के अद्भुत अनुभव के लिए इस सभा में। मैं जानता हूं कि ये आपकी ओर से आता है, इसलिए पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज रात्रि सभा को निरंतर सम्मानित करते रहेंगे अपनी उपस्थिति से, और सारे बीमारों और अपाहिजों को चंगा करेंगे। इसे प्रदान करें, होने पाए आपकी उपस्थिति के कारण ये महान रात्रि हो जाए जिसे हम जल्द न भूलने पाए। ये हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली सांझ मैं आप लोगों को देर तक रोके रहा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आज रात्रि जल्द करने का प्रयत्न करूंगा ताकि हम जल्द कर सकें और बीमारों के लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही पिछली रात्रि की सभा के विषय में मुझे अच्छा लगा। उन्हें प्रतीत हुआ कि वहाँ बहुत से लोग चंगे हुए और बहुत सारी सहायता थी। हर कोई मिलकर प्रार्थना कर रहा था। हम इसी प्रकार से खड़े होते हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं सोचता हूँ कल आने वाली रात्रि में हमें, मैं समझता हूँ उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है, ये दूसरा स्थान है, ठीक है। अब आइए हम गिनती की पुस्तक निकालें, जल्दी से 22वां अध्याय। थोड़ा छोटा सा मूल पाठ की इस पर कुछ टिप्पणियां करूं, और फिर अधिकांश समय हम प्रार्थना पंक्ति के लिए। बिली ने कहा उसने बहुत सारे पत्र दिए हैं, उनमें से 200 या 300, और ये बहुत समय लेगा कि उन्हें प्रार्थना पंक्ति में लूं। इसलिए मैं बस थोड़े समय के लिए बोलूंगा, यदि संभव हुआ तो 30 मिनट या थोड़ा अधिक नहीं, और फिर प्रार्थना पंक्ति आरंभ करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण में मुझे क्षमा करें, गिनती का 22वां अध्याय और 31वां पद मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। अब ये एक कठोर सा मूल पाठ सुनाई पड़ सकता है जिससे साहस मिले और अपनी चंगाई सभा करें। मैं यत्न करने जा रहा हूं कि प्रार्थना पंक्ति यदि संभव हो तो 9 बजे आरंभ कर दें। अब आज रात्रि जो विषय मैं लेना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अपना विचार बदलता है? आप जानते हैं हम विचार बदल सकते हैं, और क्योंकि हम थोड़ा सा भिन्न सीखते हैं, हम जानते हैं कि हम गलत हैं, परंतु मैं विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर अपना विचार बदल सकता है, क्योंकि यदि वो करता है तो वो निश्चय ही अनंत नहीं हो सकता, और वो और अच्छा निर्णय ले सकता है यदि वो इसे बदलेगा। इसलिए वो विश्वास मेरा जो उसमें है कि वो अपना विचार नहीं बदलता, क्योंकि यदि परमेश्वर कभी कोई निर्णय लेता है तो उसे उस निर्णय के साथ स्थिर रहना है, समझे। और हर बार वही परेशानी आती है, उसे उसी प्रकार से कार्य करना होता है जो उसने पहली बार किया था, उसने पहली बार में गलत किया, समझे। इसलिए ये हमें कहीं पर एक आधार विश्वास देता है। अब हम नहीं सकते, जी हाँ, विश्वास कोई हिलता हुआ पत्ता नहीं, कुछ ऐसा जिसे आप यहाँ और वहाँ उड़ा सकें। ये कुछ ऐसा है जो निश्चित है, इसे स्थिर ही होना है। और अब मैं अपना विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं कर सकता, इसे तो सिद्ध सत्य होना है इसके पहले मैं विश्वास कर सकूं। जिस प्रकार की एक मनुष्य विवाह के लिए पत्नी चुनता है, वो क्यों उस स्त्री में विश्वास करे जिससे वो विवाह करे? वो निश्चय ही स्वयं को परेशानी में डाल रहा है, समझे। इसलिए उसे करना ही है, आपको विश्वास करना ही है किसी ठोस तथ्य पर जिस पर वो विश्वास टिके, उसके शब्द पर, उस पर जो किसी ने कहा, या कुछ भी जो उसके पास होना चाहिए कि वो उस पर विश्वास टिकाए, विश्वास करे। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि परमेश्वर से मिलने को कि कुछ ऐसा हो जिसे मैं अपने विश्वास का आधार बना सकूं, और वो उसका वचन है, क्योंकि हम में से लगभग सबके पास विभिन्न विचार होते हैं। हम बैठकर और कुछ लोग खाने के लिए भी बातें करते जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम खाने में अलग अलग हैं और हम अलग बने हैं, हमारी भूख अलग अलग है, और इसलिए ये हमारी कलीसियाएं बनाता है। हम देखते हैं कि वे अपने विचारों में भिन्न हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये हम सबको एक पसंद का विशेष अधिकार प्रदान करता है। परंतु मेरे लिए मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन सही है, और मैं विश्वास नहीं करता कि ये एक व्यक्तिगत अनुवाद का है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बस वही है जो ये कहता है, और ये सत्य है, और मैं इसे इस प्रकार से लेता हूँ, बस इसी आधार पर कि ये परमेश्वर का वचन है। अब मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है, संभव है कि सारे को कार्यवंत कर दूं, परंतु मैं निश्चित तौर पर नहीं चाहूंगा कि मैं किसी और के मार्ग में खड़ा हूं जिसके पास इसे कार्यवंत करने का विश्वास ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हनोक के पास पर्याप्त विश्वास था कि उसे मरना नहीं है, बस दोपहर बाद की सैर पर गया और यहाँ पृथ्वी पर थक गया था और ऊपर स्वर्ग की ओर चलता चला गया। निश्चय ही मैं इस प्रकार का विश्वास चाहूंगा, परंतु मैं आशा करता हूं कि हमें किसी दिन ऐसा विश्वास मिलेगा जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाएंगे। कारण कि मैंने इस स्थान को चुना है क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबल में एक जगह जो कि आज रात्रि के मूल पाठ के लिए आलोचनात्मक स्थान है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अपना विचार बदल लिया और बालाम से एक बात करने के लिए कहा और फिर कुछ और बताया कि करे। इसलिए मैंने सोचा कुछ क्षण के लिए हम इसे थोड़ा ठीक करने का यत्न करेंगे और देखते हैं कि वास्तव में उसने उसे क्या बताया। इसलिए अब इसकी रूपरेखा, हम जानते हैं कि बालाम एक भविष्यद्वक्ता था और बालाक मोआब का राजा था उस समय। मोआब में वे नास्तिक नहीं थे, वे उसी परमेश्वर की सेवा करते थे जिसकी इजराइल करता था, क्योंकि मोआब देश की नेव लूत के पुत्र के द्वारा रखी गई, उसकी पुत्री के द्वारा, और इसलिए उन्होंने उसी परमेश्वर की सेवा की। यदि आप ध्यान देंगे, उनके बलिदान और हर चीज ठीक वैसी ही थी, बैल और मेढ़े भी जो दूसरे आगमन के लिए दर्शा रहे थे। और अब यदि वो आधारात्मक जो परमेश्वर की मांग है, तो मोआब भी चढ़ावे में वैसे ही आधारभूत था जैसे इजराइल था। परंतु हम उन्हें पाते हैं कि इजराइल परमेश्वर के वचन को पालन करने में कर्तव्यबद्ध था उस देश के लिए जिसकी प्रतिज्ञा उससे की गई थी। और वे आए, यहाँ एक प्रतिछाया है, शारीरिक और आत्मिक मिल रहे हैं, और जब शारीरिक और आत्मिक मिलते हैं तो वहाँ सदा टकराव हुआ, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं। और यहाँ इसराइल में इसे आत्मिक कलीसिया के रूप में दर्शाना चाह रहा हूँ, और मोआब शारीरिक कलीसिया, एक कलीसिया जिसे हम संसारिक कलीसिया कहते हैं, और हम सब इसमें निश्चित हैं कि एक कलीसिया है और एक दुल्हन है कलीसिया में से बाहर आ रही है। हम ये जानते हैं कि ये सत्य है। और यहाँ वे टकराते हैं, और हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जब वो यहाँ टकराते हैं तो ये किसी चीज के नीचे आया, जो कि मैं एक क्षण के लिए बोलने चाहता हूँ। जैसे कि वे टकराए और एक ने देखा कि दूसरा क्या कर रहा है, और वहाँ एक महान नकल करने वाला था उनमें से एक। और यही चीज है जो हम पाते हैं कि आज हम बहुत सारी नकल पाते हैं, और जब आप ये करते हैं तो आप सदा परेशानी में होते हैं। आप किसी दूसरे के जीवन को नहीं जी सकते। हम किसी चीज की नकल नहीं कर सकते। हमें वही रहना चाहिए जो हम हैं। आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, यदि ये व्यक्ति कुछ करता है क्योंकि वो ये करता है तो आप सोचते हैं कि तुम्हें भी करना है। आप ये ना करें। आप परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत हैं, और हमें एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। और अब इसराइल अपने कर्तव्य के मार्ग पर है, एक आज्ञा पर। वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिज्ञा के देश को। वे मुआबियों के आमने सामने आए, विश्वासियों का दूसरा झुंड। और मैं आशा करता हूं कि ये सुनने में बुरा नहीं है, परंतु मैं यहां एक छोटा चित्र खींचना चाहता हूं। मुआब एक देश में बसा हुआ है, वो एक नामधारी मामले जैसा संगठित है। उसके अपने लोकप्रिय हैं, उनके मान्य गण हैं, उसके राज्य के। परंतु इसराइली एक घूमने वाले थे, जहाँ गए वहाँ उनका कोई निश्चित स्थान ना था। वे वैसे ही घूमते थे जैसे प्रभु उनकी अगुवाई करता। और अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि बालाम ने बाद में अपनी भविष्यवाणी में कहा, लोग रास्तों के मध्य में से ना होंगे, ये बस बिखरे हुए लोग होंगे। यही है जो सदा से है। और हम पाते हैं कि टकराव आता है, जैसा कि केन और हाबिल, वे भी टकराव में एक साथ आमने सामने थे, और वे भाई होने के नाते दोनों एक ही माँ से थे, हवा से। और हम पाते हैं उन्होंने अनुभव किया कि वे मरणहार थे, और वे जीवन से बाहर कर दिए गए थे, जीवन की वाटिका से बाहर, और वे दोनों ये मार्ग ढूंढने का यत्न कर रहे थे कि वे उसमें वापस जाएं। और यदि आप ध्यान दें, दोनों लड़के बहुत धार्मिक थे। केन वैसे ही धार्मिक था जैसे हाबिल था, और दोनों ने ही वेदी बनाई, एक आराधना स्थल, दोनों ने बलिदान चढ़ाया, दोनों ने प्रार्थना की, और उन्होंने परमेश्वर की सेवा की दोनों ने। परंतु उनमें से एक ने गलत सेवा की, अब आप देख सकते हैं कि हम कभी बहुत ईमानदार हो सकते हैं और फिर भी गलत हों। आप गलत हो सकते हैं। एक मार्ग जो सही प्रतीत होता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु का मार्ग होता है। अब हम देखते हैं कि ये बात केन और हाबिल के साथ ठीक थी। और जब उन्होंने देखा, केन ने देखा कि हाबिल का बलिदान ग्रहण किया गया था। मैं यहाँ कहने के लिए रुक सकता हूँ, क्यों परमेश्वर ने उसकी बलिदान को स्वीकार किया? क्योंकि वो ये था, वो एक प्रकाशन के द्वारा उसने ये समझा कि ये सेव नहीं था, या मैं विश्वास करता हूँ अब उन्होंने अनार को ले लिया है या कुछ जो उन्होंने अदन की वाटिका में खाया जिससे पाप हुआ। और उसने पाया कि आदम, यानी मेरा मतलब है हाबिल, ने ये विश्वास किया कि ये लहू था जो कि वास्तव में था। और हाबिल प्रकाशन विश्वास के द्वारा परमेश्वर को केन से अधिक उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी कि वो धर्मी था। समझे? और सारी कलीसिया परमेश्वर के वचन के दिव्य प्रकाशन पर बनी है, सारी की सारी। यीशु ने ऐसा ही कहा है। एक दिन पहाड़ पर से उतरते हुए उसने अपने चेलों से कहा, तुम क्या कहते हो कि मनुष्य का पुत्र कौन है, या लोग मुझे क्या कहते हैं? और उनमें से कुछ ने कहा कि तू मूसा है, तू एलिया है, या भविष्यवक्ताओं में से एक। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने वो महान वक्तव्य दिया कि तू मसीह है, जीते परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा, शमाउन, योना के पुत्र, तू धन्य है। और विश्वासियों के बीच में एक विवाद है। अब कैथोलिक कलीसिया कहती है कि यहाँ उसने अपनी कलीसिया पतरस पर बनाई, क्योंकि उसने कहा, तू पतरस है, छोटा पत्थर, इस पत्थर पर, छोटे पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अच्छा, अब अधिकांश प्रोटेस्टेंट ये विश्वास करते हैं कि ये उस स्वयं के ऊपर था जो उसने बनाया, अपने पर, कोने का पत्थर। परंतु आप देखिए, वो इमारत के कोने का पत्थर था। मैं विश्वास करता हूँ यही जो उसने बनाया कलीसिया को, अलग होने के लिए नहीं। परंतु आप देखिए, प्रश्न था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, मसीह। उसने कहा, योना के पुत्र, तू शमौन है, मांस और लहू ने नहीं, ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की। तूने ये बात कभी भी धर्म विद्यालय जाकर नहीं सीखी, मानव निर्मित मामले से, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये प्रकट किया है। समझे? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर कभी भी प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह का आत्मिक प्रकाशन जो कि वचन है, तो फिर ये वचन का आत्मिक प्रकाशित सत्य है, ठीक यही जहाँ कलीसिया टिकी है। मैं सोचता हूँ जो आरंभ में हाबिल के पास था, एक आत्मिक प्रकाशन, ये खेत का कोई फल नहीं था या हमारे हाथों का कार्य या आदि आदि, ये लहू था और उसने परमेश्वर को अधिक उत्तम बलिदान चढ़ाया जो केन ने चढ़ाया। हम ये अब्राहम और लूत में पाते हैं, वही एक चीज चुनाव में, क्योंकि लूत नीचे चला गया जब वो समय आया, और जब आत्मिक और एक शारीरिक कलीसिया टकराव में आई चरवाहों के कारण, उन्होंने एक दूसरे से अलग होना पड़ा। और जब कभी ये घटित हुआ तो इससे एक द्वेष हुआ। और हम पाते हैं कि हाबिल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और उसने केन की सी सुंदर बड़ी भेंट स्वीकार नहीं की, इसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया और धर्मी था और झुककर दंडवत की और आदि आदि, हर वो कार्य किया जो हाबिल ने किया। केवल उसके पास ये प्रकाशन नहीं था कि सत्य क्या था। इसलिए हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने हाबिल के प्रकाशन और उसकी भेंट को स्वीकार किया, इससे हाबिल के प्रति केन में द्वेष आ गया और वहाँ पहली हत्या हुई। हम पाते हैं कि द्वेष अब्राहम और लूत के चरवाहों में आ गया और उन्हें अलग होना पड़ा। हम पाते हैं मूसा और कोरह में भी एक टकराव था, यीशु और यहूदा में एक टकराव था। जैसा कि कभी ये एक ही चीज रही है और ऐसा ही आज है, तो भावी कलीसिया और आत्मिक कलीसिया में एक टकराव था जब वे अपने आमने सामने आए। जब शारीरिक आत्मिक के साथ मुकाबला करता है शारीरिक नकल के द्वारा, परंतु ये जैसा कि ऐसाव और याकूब में था, ये कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर की अपनी बुलाई हुई कलीसिया है, नामांकित है और एक और रखी हुई है, और जिस युग में वो जीवित है वो स्वयं को उस पर प्रकट करेगा हर बार, जैसा कि उसने रोमियों के 8वें अध्याय में कहा कि पूर्व ज्ञान या परमेश्वर का पहले से ठहरा हुआ निश्चय ही टिकता है। केन, यानी मेरा अर्थ है एसाव और याकूब, इसके पहले कि वो दोनों जन्मे, इसके पहले कि उनके पास चुनाव का अवसर होता, परमेश्वर ने कहा, मैंने एसाव से घृणा की और याकूब से प्रेम किया, क्योंकि वह जानता था कि उनमें आरंभ से क्या था। और हम जानते हैं, इसे अपने मस्तिष्क में रखें। वो जानता है कि आपके हृदय में क्या है, वो जानता है कि आपका क्या अर्थ है। कोई मतलब नहीं हम क्या कहते हैं, वो जानता है कि आपका क्या अर्थ है। और इस कारण हमेशा परेशानी हुई है, और वे सदा शारीरिक सदा यत्न करता है। जब से केन ने हाबिल को नष्ट किया, शारीरिक सदा आत्मिक के प्रभाव को नष्ट करता है। और हम भी यही पाते हैं आज भी, ठीक यही है, यही सिद्ध करता है कि ये शैतान की ओर से आता है, क्योंकि ये एक द्वेष और सत्य की नकल है। इसलिए हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना विचार कभी नहीं बदलता। उसमें जो उसने कहा वो सदा उसे सत्य बनाए रखता है, परंतु उसकी एक अनुमति की इच्छा है। अब वहाँ जहाँ परेशानी है, हम परमेश्वर की अनुज्ञा पर कार्य करने का यत्न करते हैं और वो इसकी अनुमति दे देगा, परंतु यदि हम उसकी अनुज्ञा को भी लें, यद्यपि ये सही नहीं है, वो अपनी अनुज्ञा को कार्यवंत होने देगा, अपनी सिद्ध इच्छा को महिमा देने के साथ साथ। परमेश्वर के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हम वो जानता है कि समय कहाँ चल रहा है। आज रात्रि कुछ भी गलत नहीं है। हर प्रहार ठीक उसी प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए। हर चीज हम सोचते हैं ये गलत है, परंतु वो जानता है कि ये सही है, इसे इसी प्रकार से होना चाहिए। जैसा आरंभ में परमेश्वर ने पाप को आने देने की अनुमति दी, उसने नहीं किया, ये उसकी सिद्ध इच्छा नहीं थी। परंतु आप देखिए, परमेश्वर महान आत्मा, उसमें पिता गुण था, और ये चीजें जो आपने प्रकट देखी वो उसके गुण प्रकट हो रहे हैं। वो अकेला रहता है, वो यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं था, परमेश्वर आराधना का पात्र था, वो एक महान अनंत था और उसमें गुण थे, जैसे कि पिता होना, बचाने वाला होना, चंगा करने वाला होना। और अब कैसे वो पहले उसे पिता होना था, क्योंकि ये सिद्ध होता है कि वो पिता था, परंतु वो अकेला रहा, वो अकेला ही अमर था, और अब परंतु उसके गुण प्रकट होने थे। अब बचाने वाला होने के लिए कुछ तो नष्ट होना था, और परमेश्वर जानबूझकर किसी चीज को नहीं खो सकता और फिर उसे छुड़ाए। ये उसकी पवित्रता ही नहीं हो रही थी और उसका महान न्याय। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र नैतिक माध्यम में रखा था, ये जानते हुए कि मनुष्य गिरेगा, और उसमें वो स्वयं मनुष्य बना, मनुष्य को बचाने की प्रक्रिया में जो गिर गया। यही कारण था कि यीशु इमैनुएल था। यदि परमेश्वर अपने स्वयं के अलावा दूसरे व्यक्ति को भेजता तो वो धर्मी ना होता। परमेश्वर को स्वयं ही आना था और स्थान को लेना था, और परमेश्वर आत्मा में नीचे आकर उस स्थान को नहीं ले सकता था। उसे देहधारी होना था अपने ही रचित पुत्र की देह में, और उसने यहाँ दर्शाया कि आरंभ में मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचने का सिद्ध इच्छा थी, परंतु आप देखते हैं उसने कामुकता को बीच में आने की अनुमति दी। उसने कभी ये नहीं चाहा कि बालक शारीरिक इच्छा के द्वारा जन्मे, परंतु ये अनुमति दी गई थी जो कि जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अब हम पाते हैं कि मोआब आरंभ से ही अवैध था, क्योंकि वो लूत का पुत्र था अपनी ही पुत्री के द्वारा। ध्यान दें, अब स्वाभाविक कलीसिया पर ध्यान दें। मोआब चित्रित करता है स्वाभाविक कलीसिया को, मोआब और इसराइल आत्मिक कलीसिया को। अब इसराइल दुल्हन बाहर बुलाएओं को चित्रित करता है। कलीसिया स्वयं वचन कलीसिया का अर्थ बुलाए, बाहर आओ, वे जो बाहर आए उसमें से बाहर निकलो, मेरे लोगों अलग हो जाओ। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपने लिए ग्रहण करूंगा, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। परमेश्वर की कलीसिया संसार में से बुलाई गई है, संसार की दुर्व्यवस्था से। आप संसार के नहीं हैं, जैसा कि मैं कहने का यत्न कर रहा था उस रात्रि आपसे, ये जब कि आप जानते हैं कि आपके पास आपके अनंत छुटकारे का बयाना है जो कि अब आप में है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा है, ये आपको पहले ही जिला चुका है। अब आप उसके साथ जी उठे हैं और हम मिलकर मसीह यीशु के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठे हुए हैं। देखिए, अब आप संसार के नहीं हैं। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं और आपका प्रेम अब भी संसार की वस्तुओं पर है, तो फिर परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, समझे? हम संसार से स्वतंत्र हैं, कोई भी इच्छा नहीं है। इब्रानियों में मैं विश्वास करता हूं कि 10वां अध्याय में कहा, प्रतिवर्ष पाप का निरंतर स्मरण होता था, उन पशुओं की देह चढ़ाई जाती थी। परंतु इस मामले में उपासक एक बार शुद्ध किया गया तो उसके विवेक में पाप नहीं है, पाप की इच्छा नहीं। आपसे सारी चीजें जाती रही क्योंकि आप एक नए जीवन में जी उठे हैं। और फिर शारीरिक कलीसिया बस एक लोगों का झुंड है, नामधारियों में से जो सदस्य बने, ये और नहीं। मैं तो यहाँ तक कि कलीसिया भी नहीं कहता, मैं इसका उल्लेख नहीं करता। मैं तो इसको सराय की तरह कहता हूँ, मेथोडिस्ट सराय, बैप्टिस्ट सराय, पेंटिकॉस्टल सराय। परंतु कलीसिया तो मसीह यीशु में फिर से जन्म पाई हुई है, जो कि नई सृष्टि है। और इसलिए हम इसे अब भी देखते हैं कि परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है। अब मोआब दिखाई दिया, मोआब ने नीचे मैदान में देखा और देखा परमेश्वर इन लोगों के मध्य में है। यहाँ तक कि ये लोग संस्थागत नहीं, ये जगह से जगह घूमते फिर रहे थे। परंतु विचित्र बात, ये इन राष्ट्रों पर चढ़ आए और उन्हें ले लिया। उनके मार्ग में हर चीज थी, उन्होंने उसे ले लिया। अब उन्होंने पाया मोआब की दृष्टि इस पर है। बलाक ने इसराइल राष्ट्र पर दृष्टि डाली और उसने कहा, ये लोग सारी पृथ्वी पर छा गए हैं। उसने कहा, और इन्होंने राष्ट्रों को साफ कर दिया है जैसे कि बैल घास को चट कर जाता है। और उन्होंने एक महान मूल सिद्धांत ढूंढ लिया था कि कैसे उन्होंने ये महान प्रकाशन पाया। वहाँ उनके मध्य में एक भविष्यद्वक्ता था, उसके पास एक भविष्यद्वक्ता था। अब कोई है जिसने उनकी अगुवाई की। ये कोई मानव निर्मित तंत्र नहीं जिसका कि वो अभ्यस्त था, उसका प्रतिनिधि उसके साथ था और आदि आदि, परंतु ये और उसके सम्मानित व्यक्ति, परंतु उनके पास अगुवे थे, दिव्य कहलाने वाले अगुवे। और ओह, वो क्या ही दुख भरा दिन था जबकि संसार की कलीसिया ने पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई को छोड़ दिया और एक बिशप को ले लिया या कुछ भी जिसने इसका स्थान लिया। ये दुख भरा दिन था। पवित्र आत्मा कलीसिया का अगुवा हुआ करता था, उसे यीशु मसीह के वचनों की पुष्टि के लिए भेजा गया है कि कलीसिया को वैसे जीवित रखे जैसे ये आरंभ में जीवित थी। अधिक समय नहीं हुआ, यहाँ नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय, एक धर्म विद्यालय, उनका यहाँ एक फिनिक्स में भी है। और उनमें से एक मनुष्य या एक दो विद्यार्थी मेरे पास आए और कहा, भाई ब्रनम, हम आपको पसंद करते हैं, हमारे पास आपके विरोध में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, परंतु हम आपको थोड़ा सा सुधारना चाहते हैं। और मैंने कहा, अच्छा ठीक है, निश्चय ही ठीक होना चाहता हूँ मैं। और इसलिए मैंने कहा, यदि मैं गलत हूँ तो निश्चय ही मैं गलत नहीं रहना चाहता, मैं बहुत से लोगों से बातें करता हूँ। और उसने कहा, आपकी परेशानी यहाँ है। बोला, आप इस बात का यत्न करते हैं या फिर से प्रेरितों के धर्म में फिर से रहना चाहते हैं, जबकि प्रेरितों का धर्म उन प्रेरितों के साथ समाप्त हो गया। और मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, अच्छा अब यदि, उसने कहा, मैं इस विषय में आपसे विवाद नहीं करूँगा। मैंने कहा, ना ही मैं चाहूँगा, हम नहीं करते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम भाई लोग हैं। और उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैंने कहा, निश्चय ही मैं सहायता पाने का इच्छुक हूँ। और उसने कहा, अब आप देखिए, उसने कहा, अब ये सत्य है। और मैंने कहा, अब बात करते हुए हमें पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मैं अपनी वाली नहीं करूँगा और मेरे पास और कोई नहीं है सिवाय इस वाली के, परंतु आदि आदि। परंतु मैंने कहा, मैं पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं करूँगा, केवल बाइबल, और आप भी बस बाइबल का प्रयोग करें। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, अब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रेरिताई कलीसिया पेंटिकुस्त के दिन आरंभ हुई, क्या आप इससे सहमत हैं? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। मैंने कहा, अब हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को वही सामर्थ्य दी इस प्रेरिताई क्षणों के लिए। उसने कहा, जी हाँ, ये कलीसिया की बनावट है। अब कलीसिया पहले ही व्यवस्थित है और हमारे पास हमारे सारे सेवकगण हैं, हमारी महान संस्थाएं और चीजें हैं। हमें उन चीजों की और आवश्यकता नहीं है कि लोगों को खींचें। मैंने कहा, अब बाइबल ये कहाँ कहती है? मैंने कहा, अब आप मुझे बताएं, ये कहाँ पर कहती है? और उसने कहा, ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार से नहीं कहा गया है। मैंने कहा, तो फिर मैं इसे नहीं ले सकता जब तक कि ये उसी प्रकार से ना कहा गया हो। देखा, मैंने कहा इसे इसी प्रकार से ही लेना चाहिए। मैंने कहा, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब भी लोगों को बुला रहा है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, अब आप विश्वास करेंगे कि बाइबल सही है हर उत्तर? जी हाँ। मैंने कहा, अब पेंटिकोस्ट के दिन बोलने वाला पत्रस था जिसके पास राज्य की कुंजियां थी, ये ठीक बात है? और मैंने कहा, अब जो कुछ भी इसका निर्णय था, यीशु ने कहा, जो भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे मैं स्वर्ग में बांधूंगा और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। उसने कहा, मैं इसका विश्वास करूंगा। मैंने कहा, अब प्रेरितों के दूसरे अध्याय और 38वें पद में पत्रस ने कहा, वे जो अचंभे में पड़े उन लोगों से कहा, ये लोग अन्य अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं। और उन्होंने उससे पूछा बचने के लिए वे क्या कर सकते थे, और उसने कहा तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से है और जो दूर दूर के हैं और जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। अब यदि परमेश्वर अब भी बुला रहा है तो उनके लिए यही प्रतिज्ञा है। वो यहाँ आया और बिली ग्राहम के एक झुंड के साथ था उन प्रार्थना सभाओं के लिए, और उनका झुंड यहाँ कहीं कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है कुछ सप्ताहों पहले। वास्तव में ईमानदार गहरी प्रार्थना, परमेश्वर के लिए पवित्र उपवास और उस सारे झुंड पर पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषाओं में बात करने लगे। जी हाँ, अब वो फ्रेंडली चर्च का सदस्य है, असेंबली ऑफ गॉड ट्यूसान एरिजोना में। उसने कहा ओ भाई ब्रैनम, मैं वहाँ जाता हूँ और अच्छा अनुभव करता हूँ। कहा अपने हाथों को उठाता हूँ और कहा परमेश्वर की महिमा हो, मैं बस गाता हूँ। और कहा मैं इसे न्यू टेस्टमेंट बैप्टिस्ट चर्च में नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैं देखता हूँ कि आप नहीं कर सकते, इसी कारण से आप बाहर हैं। जी हाँ, इसलिए आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है, जो वो कहता है वो उसे करेगा। परमेश्वर को अपना वचन बनाए रखना है। अब हम यहाँ पर पाते हैं कि वो शारीरिक नकल जो मोआब के पास थी, उसने इस भविष्यद्वक्ता को इसराइल के मध्य में देखा। ये इस योग्य था कि आशीष दे, श्राप दे, अगुवाई और आदि आदि, इसलिए राजनीति के द्वारा इससे मिलाने का यत्न किया। अब यही जो आज कलीसियाओं में हो रहा है, उन्होंने ये यत्न किया कि किसी तरह से तंत्र के साथ इसे मिलाएं। आप ये नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को कलीसिया में जीवित रहना चाहिए, सदा कलीसिया की उस युग के लिए अगुवाई करता है जिसमें वो जीवित है, कि उस वचन की पुष्टि करे जो उस युग के लिए प्रतिज्ञा की हुई है। परमेश्वर ने वचन बोला आरंभ से, और इतना इस युग के लिए और इतना इस युग के लिए और कुछ निश्चित युगों के लिए, ये सदा इसी प्रकार से हुआ है। और देखिए, पवित्र आत्मा को कलीसिया में जीवित रहना चाहिए कि कलीसिया को इस दिन में जीवित रखे। इसे यहाँ होना चाहिए कि अंतिम दिन की सेवकाई की पुष्टि करे, अंत के दिनों के चिन्ह, अंत के दिनों की पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। इसे ये सब करने के लिए यहाँ होना है, और आप इसे कार्य करने वाले तंत्र से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का अपना तंत्र है, वही है जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि मूसा के पास एक राजा था और वो राजा परमेश्वर था जिसने इसका अभिषेक किया, और बालाम भी एक राजा बलाक के अधीन था, और ये राजनीतिक तंत्र के समान था। देखिए, बालाक, बालाम एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, वो अपनी सूचनाओं के लिए बालाक के पास गया। मूसा अपने लिए परमेश्वर के पास गया कि सूचना ले। वहाँ एक अंतर था, तब भी वे दोनों नबी थे, क्योंकि वे दोनों परमेश्वर के बुलाए हुए थे, दोनों परमेश्वर से मिले, दोनों ने परमेश्वर से बातें की और दोनों आत्मा से भरे हुए थे। अब मैं घर आ रहा हूँ, देखा, अब वे दोनों आत्मा से भरे हुए मनुष्य थे। अब ये सत्य है, बाइबल ने ये कहा है, परमेश्वर बालाम से मिला और उससे बातें की, समझे। इसलिए हम ध्यान देते हैं, प्रत्येक नबी, वे दोनों परमेश्वर के नबी होने के कारण परमेश्वर के जन, उन्होंने अपने लोगों की अपनी अगुवाई में भोजन दिया। मूसा परमेश्वर से पोषित और बालाम यहाँ बालाक द्वारा पोषित। यह ध्यान दें, आत्मिक और शारीरिक में प्रतिछाया, ये कितना सिद्ध था। मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उस कर्तव्य के मार्ग पर, जो कि परमेश्वर के दूसरे मनुष्य की चुनौती से मिला। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? परंतु देखिए, उनकी वहाँ क्या व्यवस्था थी। ये एक संस्थागत राष्ट्र था। मूसा इसराइल के बालकों की अगुवाई कर रहा था, जैसा परमेश्वर उनको बताएगा वहाँ जाएंगे, अग्नि स्तंभ के द्वारा अगुवाई में, और एक अलौकिक जीवन जो उनके मार्ग की अगुवाई कर रहा था। और मूसा अपनी सूचना उस वचन के द्वारा पा रहा था, निसंदेह वो परमेश्वर से निकला, वो अग्नि स्तंभ जो कि वाचा का दूत था, जो कि मसीह था अभिषिक्त, और वो अपना संदेश वहाँ से ले रहा था और इसराइल के बालकों को दे रहा था, जो कि प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर थे। परंतु ये मनुष्य बस चुका था, और उसके पास उसका राज्य था, उसके पास उसकी कलीसिया थी, उसके पास वहाँ हर चीज व्यवस्थित थी। इसलिए उसने इस व्यक्ति को बुलवा भेजा कि यहाँ आकर इन लोगों को श्राप दे। और ध्यान दें, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नबी, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के कार्यों को दूसरे मनुष्य के साथ देख रहा है और परमेश्वर के उस कार्यों को चुनौती दे रहा है, जबकि वो जान गया और भली प्रकार जानना चाहिए। अब बालाम, पहले जब बालाक ने उसे बुलवा भेजा और उसे बताया कि यहाँ आकर इन लोगों को श्राप दे, अब बालाक ने वही चीजें की, यानी बल्कि बालाम ने वही चीजें करी जो ठीक था। उसने पहले परमेश्वर को खोजा, अब उसे यही करना चाहिए था। और तब परमेश्वर ने उसे अपना सिद्ध स्पष्ट उत्तर दिया, उसके साथ ना जा, उन्हें रहने दे, लोगों को श्राप ना दे, वे आशीषित हैं। अब ये पर्याप्त होना चाहिए था। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो उसे बदल नहीं सकता। ध्यान दें, उसकी सिद्ध इच्छा थी तू मत जा, उन लोगों पर आक्रमण न कर, वे मेरे लोग हैं। ये उसकी सिद्ध इच्छा थी। परंतु बालाम उन लोगों को आरंभ से ही नहीं चाहता था। देखिए, आप यही हैं। आज हमारे पास कितने बालाम हैं। वही चीज, वही बात, वे अच्छी तरह जानते हैं। वे हमारे प्रभु यीशु के दिनों में थे। निकोदीमस आया और कहा, रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है या एक या गुरु होकर परमेश्वर की ओर से आया है। कोई मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकता जो तू करता है जब तक परमेश्वर उसके संग ना हो। देखिए, वे इसे जानते थे। बालाम फिर वहाँ पर था। अब बालाम ने लोगों को पसंद नहीं किया। ध्यान दें, उसका मुख्यालय, उसने जब कुछ और अच्छे व्यक्ति वहाँ भेजे कि उससे कहें, अब कुछ लोग वहाँ आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि तू एक नबी है, तू महान व्यक्ति है, इसलिए तू यहाँ आ और इन लोगों को श्राप दे। बालाम ने कहा, अब आप एक मिनट रुकें, जब तक मैं भीतर जाकर प्रार्थना करूँ और पूरी रात्रि रुकूँ, संभव है प्रभु मुझसे मिले और वो मुझे बताएगा। ठीक है, अगली प्रातः है, प्रभु उससे मिला और कहा, मत जा, उन लोगों को श्राप न दे, वे आशीषित हैं। ठीक है, बालाम बाहर गया और कहा, भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि नहीं जाना है। अब ध्यान दें, जब वे वापस चले गए और मुख्यालय को, उसके लिए कि वहां जाकर अपनी इस सभा को बंद करें जो उनकी हुई थी। आप देखते हैं, तब मालूम करने आए, मुख्यालय ने और अच्छे लोगों का दल भेजा, उच्च पद के, शायद एक बिशप, कोई और, ये राज्य का प्रेस्बिटर, किसी को वहां भेजा कि जाकर उससे कहो कि कैसे भी हो इसे रोके। समझे? ध्यान दें, उसका अच्छे प्रभाव वाला झुंड, अच्छे उपहार, अधिक पैसा, कहा, मैं तुम्हारा पद अधिक ऊंचा कराऊंगा, मैं तुम्हें बजाय साधारण मनुष्य के तुम्हें और ऊंचा बना सकता हूँ, मेरे पास ये करने का अधिकार है कि इस महान क्षण में मैं एक राजा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ यदि तुम बस इतना करो। ध्यान दें, नए प्रस्ताव ने उसे अंधा कर दिया। उसे मालूम होना चाहिए था कि परमेश्वर ने जो कहा परमेश्वर करेगा, परंतु इसने उसे अंधा कर दिया। और परमेश्वर के एक नबी के समान उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए था। ऐसे झुंड से उसको, उस झुंड से बाहर हो जाना चाहिए था आरंभ से ही। और यदि मैं किसी परमेश्वर के जन से यहाँ बातें कर रहा हूँ, जब वे आपसे मुख्यालय में बताने की बात करते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए हैं और ये जो हम यहाँ कर रहे हैं और प्रभु यीशु हमें आशीष दे रहा है और ये धर्मांधों का झुंड है जो चल रहा है और भावावेश में है, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक वही उस झुंड से बाहर आ जाओ, उससे बाहर आ जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन प्रकट हो रहा है। वे कहते हैं, प्रेरितों के दिनों वाली जैसी कोई बात नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई बपतिस्मा नहीं है, कि अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ओ भाई, आप इसे न सुने। आज बालाम जैसे बहुत हैं जो अपने कार्यस्थल में बैठे हैं और बाइबलों की इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि ये सत्य है, परंतु फिर भी अपनी पदवी के कारण वे इसका पक्ष नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान दें, परमेश्वर, उसे मालूम था कि उसे इस झुंड में नहीं होना चाहिए, या बालाम को मालूम हो जाना चाहिए था। वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। ये लोग आपसे परमेश्वर की इच्छा के बाहर बातें करेंगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा पाते हैं तो फिर इसके बाहर किसी को अपने से बात ना करने दें। मैं भले लोगों को जानता हूँ, सभाओं में आते हैं, चंगे होते हैं, वापस चले जाते हैं और वे कहेंगे, ओ इससे कुछ लेना देना नहीं, आपने कार्य चला दिया, इससे कुछ नहीं, और लोग संदेह में चले जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि आकर मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, वापस गए, संभव है अन्य भाषाओं में बातें की और वापस चले गए, और कलीसिया ये कहेगी, क्यों तुम मसीह के लिए लज्जा हो और आदि आदि। ओ प्रभु, ये ना करो, उस झुंड से बाहर निकलो, इससे अलग रहो। ध्यान दें, अनिश्चित वक्तव्य का प्रयोग किया उसके विवेक के कारण। देखिए, बालाम ने कहा, संदेह है, आप एक रात्रि और रुकें और मैं परमेश्वर से पूछूंगा। आपने देखा, हो सकता है वो अपना विचार बदल दे, परंतु परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देने की घोषणा हमसे करता है, उस पेंटिकोस्ट के दिन उसे उसी प्रकार से बनाए रखना है। उसने सारे बाइबल के युगों में वही किया और वो किसी भी समय जो व्यक्ति इस आधार पर आएगा जो उसने वहाँ दिया है। यदि आप आते हैं विश्वास करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हुए और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर उस लिखित के लिए बाध्य है कि उसे पूरा करे, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो इसे पूरा करेगा यदि आप इसका पालन करेंगे। परंतु आप इसका पालन नहीं कर सकते कि इस नुस्खे को लेने का यत्न करें, इसे किसी झूठे दवा विक्रेता के पास ले जाएं, जो इसमें कुछ और मिला सकता है, ये रोगी को मार डालेगा। यही कारण है कि आज हमारी बहुत सी मरी हुई कलीसियाएं हैं, कलीसियाओं के सदस्य हैं, वे गलत लिखे हुए नुस्खे को देने का यत्न करते हैं। परमेश्वर का नुस्खा यहाँ ठीक बाइबल में दिया हुआ है, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आपको दवा ठीक उसी प्रकार से लेनी है जिस प्रकार डॉक्टर ने देने को कहा है। बाइबल ने कहा, क्या कोई नहीं? क्या गिलाद में कोई औषधि नहीं? क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है? निसंदेह वहाँ है। कहा, तो फिर तू क्यों मेरे लोगों की कुंवारियाँ इस दशा में हैं? देखिए, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास डॉक्टर है, ये बस दवाई वाला जो वचन का गलत लेख भर रहा है, यही है जो है। आपसे कहने का यत्न कर रहे हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है, और ये सारी चीजें, ये निरर्थक है। बाइबल बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर जो कहता है उसे वापस नहीं लेता, और वे एक अनिश्चित सा समाधान निकालते हैं और कोई दूसरा, भाई हम ये विश्वास करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या विश्वास करते हैं, यही जो परमेश्वर ने कहा। उसने कहा, मैं अपना आत्मा सब देहधारियों पर उंडेलूंगा। उसने ये अंत के दिनों के लिए प्रतिज्ञा की है। वे ये कहने का यत्न करते हैं कि सभाएं जो तुम देख रहे हो, वे मुझसे कहते हैं एक भविष्य बताने वाला, एक अच्छा सा भविष्यवक्ता, या एक बालजबूब, या कोई शैतान। उन्हें ये कहना ही है, क्योंकि वे अपने पिता से हैं। यही जो आरंभ में उसने यीशु के विषय में कहा, जो भी है ये हम नहीं जो कर रहे हैं, ये वही यीशु है, क्योंकि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, ये उसका आत्मा है। ओह, कुछ ऐसा जिसे हम बाह्य पद से हो सकता है, और बाह्य पद से उसके प्राधिकार को बहुत से लोग इसे बाह्य पद में लेने का यत्न करते हैं। ओ, आकर कलीसिया के सदस्य बन जाओ और ये ठीक हो जाएगा। हमें पुरानी कलीसियाएं हैं, हम यहाँ बहुत वर्षों से हैं, हमने आरंभ किया। जी हाँ, ये ठीक बात है। यदि ये ऐसा है तो फिर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने आप सबको ले लिया। संस्थाओं में ये सबसे पहले है, वे पहले थे। परंतु स्मरण रखें, पहली कलीसिया नहीं, वे पहली संस्था हैं, और उनमें से प्रत्येक की माँ, जिसमें उनमें से प्रत्येक परमेश्वर के विरोधी हैं। प्रकाशित वाक्य 17 यही कहता है, देखा? जी हाँ, हम अंत के दिनों में हैं। अब स्मरण रखें, परमेश्वर आपको होने देगा, यद्यपि देखिए अब। और फिर बालाम, उसने सोचा, अच्छा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, बढ़ जा। क्यों? परमेश्वर जानता है कि उसके हृदय में क्या है। परमेश्वर जानता था कि आरंभ से ये उसके हृदय के अंदर है, इसलिए उसने उससे कहा, चला जा, वो इसकी अनुमति देगा, वो आपको ये करने की अनुमति देगा। बहुत सी बार वो आपको आशीष देगा इसे करने में। यहाँ तक कि उसने इसराइल को भी आशीषित किया। अनुग्रह ने उन्हें पहले ही भविष्यवक्ता दिया था, अग्निस्तंभ, एक छुटकारा, एक चिन्ह और आश्चर्य। उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया और सब कुछ। फिर भी वे व्यवस्था चाहते थे, परमेश्वर ने उन्हें ये लेने दिया, परंतु सारे समय उसने उन्हें श्रापित किया। उसने बालाम को बस आगे बढ़ने दिया जैसा वो चाहता था, परंतु उसने क्या किया? वो वहाँ पर गया और बजाय लोगों को श्रापित करने के, उसे लोगों को आशीषित करना पड़ा। वे उन्हें श्रापित न कर सका जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया। और मैंने आपको बताया कि 9 बजे छोड़ दूंगा, और मैंने ऊपर देखा और अब ये समय है, और मेरी कॉपी में टिप्पणियां भरी पड़ी हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता। उसकी सीधी इच्छा बालाम के लिए ये थी कि ना जाए, और जब परमेश्वर ने वक्तव्य दिया तो इसे सदा तक सत्य रहना था। अब बाइबल ने कहा, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि किसी निश्चित तरीके में, इसका अर्थ तो वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। यीशु ने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या ये ठीक बात है? उसने मरकुस 16 में प्रतिज्ञा दी है, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। वे कहते हैं, भाई वो तो केवल चेलों के लिए था। उसने कहा, सारे संसार में जाकर हर प्राणी को वचन प्रचार करो। सारे संसार में उनके ये चिन्ह होंगे, और हर प्राणी को, वे मेरे नाम से प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लें या विषैली वस्तु पी लें तो इससे उनकी हानि ना होगी, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। अब ये उसकी योग्यता है। देखिए, हम किसी योग्यता का यत्न करते हैं, हम यत्न करते हैं कि कलीसिया योग्य हो जाए, जो कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन है। हम कलीसिया को योग्य नहीं बना सकते, हमें परमेश्वर की ही योग्यता को प्राप्त करना है। मैंने सदा कहा है, ये मिलान का एक महान समय है। आप अपनी सीढ़ियों को लाल रंग रंग लें और देखिए, आपका पड़ोसी भी लाल रंगता है। आप में से कुछ महिलाएं एक प्रकार की टोपी पहन लें कलीसिया में, और देखिए बाकी भी वही ले लेंगी। श्रीमती जैकलिन कैनेडी, उसने वाटर हेड वाले बाल कटवाए, और सारी स्त्रियों को देखो, उसने वो ढीला रंग बिरंगे कुर्ता पहना या इस प्रकार की चीज। ये महिलाओं के लिए सड़क पर होना लज्जाजनक था, उसके साथ खींचा हुआ इस प्रकार से पहनना। सारी स्त्रियों को देखो, वही काम कर रही हैं। ये एक नकल है, परंतु ये संसार में है। कलीसिया के लोगों ने ये ले लिया है, और जो वे करते हैं लज्जाजनक है, उनके लिए ये करना गलत है और ये अपमानजनक है। और जब हम इसे पेंटेकोस्ट के अंदर घुसते हुए देखते हैं, ये और भी अपमानजनक है। ये ठीक बात है, परंतु आप देखिए, कलीसिया इसे पहनती है और इसे चलने देती है। अब हम चिंता नहीं करते, मैंने कभी ये चिंता नहीं की कि चाहे मेरा कोट पैंट से मेल खाए या नहीं, मेरी टाई कोट से। मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव परमेश्वर की बाइबल से मेल खाए और उसकी मांग के साथ रहे। और यही जो हम पेंटेकोस्टल लोगों को करना चाहिए, हमारा अनुभव भी उनके जैसे हो, क्योंकि वो वही यीशु है, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ, वो आज जीवित है और वो हमारे मध्य में जीवित है। इसने मुझे एक दिन की याद दिलाई, उसकी माँ यरूशलम से छोड़कर चली गई थी, उस आराधना से, और उसका पालने वाला पिता यूसुफ, और वे 3 दिन की यात्रा पर गए, और ये मानते हुए कि वो उनके साथ था, और जब उन्होंने ढूंढा तो वो वहाँ नहीं था। और आप जानते हैं कि मैं उसे आज के समान चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कलीसिया ने 3 स्तरीय यात्रा कर ली है, लूथर, वेस्ली, पेंटेकोस्टल, 3 स्तर की यात्रा। परमेश्वर उन्हें संदेश देगा, न्यायोचित, लूथर इस पर टिका था, तब पवित्रीकरण वेस्ली के द्वारा आता है, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंटेकोस्टल के साथ आया। और मैं आश्चर्य में हूँ, यदि हम कहीं इस बदमिजाजी से नहीं अलग होते, कहीं बड़ी और महान चीज बनाए, जैसे कि बालाम के अपने विचारों में था। महान संस्थाएं एक दूसरे से आगे बढ़कर, और ये वाला अधिक, और संडे स्कूल के लिए मेडल और स्टार दे रहे हैं, कौन अधिक सदस्य ला सकता है और किसी भी प्रकार से कलीसिया में ला सकता है। मैं आपको बताता हूँ, केवल एक ही कलीसिया है, उसमें कोई ढोंगी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जिसका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ है। आपको उसमें राजी नहीं किया गया है, आप उसमें जन्मे हैं, आप वहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए हैं। उन्होंने पाया, अभिभावक ने पाया कि वो उनके बीच में नहीं है। अब इस घड़ी में ये महान संकट चल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये राष्ट्र हिल रहा है, केवल राष्ट्र ही नहीं परंतु संसार हिल रहा है। ये अंत के समय में है, जो मैं जानता हूँ, और कोई दूसरी चीज घटित नहीं होनी सिवाय उठाए जाने के, प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ये सब तैयार है, और हम इस इकट्ठे होने को देखते हैं। ओ, हर लाभ को ले लें, ये बेदारी सभा आ रही है, हर चीज को जो इससे ले सकते हैं आप ले लें, ये परमेश्वर का है। यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो इसे अपने मस्तिष्क में रख लें। जब तक आप इसे नहीं पाएंगे आप जाने वाले नहीं। इसे करने की यही विधि है, वहीं टिके रहें, क्योंकि आप हो सकता है अंतिम सुअवसर हो। संभव है पश्चिमी किनारे पर कोई दूसरी बेदारी सभा ना हो, ये हो सकता है समुद्र के नीचे हो उस समय, इसके पहले दूसरा वाला। इसलिए हम नहीं जानते कि क्या घटित हो सकता है, इसलिए हम परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राष्ट्रों पर आए। अब मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने सोचा वो साथ साथ हैं, परंतु उन्होंने पाया संकट में कि वो नहीं था। देखिए, वो उसके साथ ना था। अब हम समय में पाते हैं कि जब ये महान चीज लाई गई, और हम पाते हैं कि हम अपनी कलीसियाओं में कुछ चूक रहे हैं, और वो मसीह की सामर्थ है। अब देखिए, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। एक वास्तविक सच्चा प्रेम सदा सुधारने वाला होता है। अब हम मसीह को अपनी कलीसिया में नहीं पाते, हम मसीह को अपने पेंटेकोस्टल लोगों के मध्य में नहीं पाते, हमारे भाई और बहनें, कुछ गड़बड़ है। पुराने तरह की प्रार्थना सभाएं जो होती थी सारे दिन और रात्रि, अब वे नहीं होती। हमारी महिलाएं लंबे बाल रखा करती थी, अब वे ऐसा नहीं करती। ये स्त्रियों के लिए लज्जा की बात है कि रंग और रंग का प्रयोग, पहले आरंभ के दिनों में जिस प्रकार ये महिलाएं व्यवहार करती थी, कुछ तो गलत है। मसीह में गलती नहीं है, देखिए कुछ तो गलत हुआ है। कुछ कहीं तो प्रचार मंच ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देते थे, परंतु अब वे देते हैं। देखिए, संकट बढ़ रहा है और हम कुछ खो रहे हैं। हम उस सामर्थ्य को खो रहे हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ की महान यंत्र चलना चाहिए और महान चिन्ह और आश्चर्यकर्म। ये भवन परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा होना चाहिए। अब जब तक कि एक पापी यहाँ टिक नहीं सकता था, पवित्र आत्मा इसे दोषी ठहरा रहा है, जल्द ही ठीक वैसे जैसे हनानिया और सफीरा, और हम किसी चीज को खो रहे हैं। अब क्या घटित हुआ? वे उसे ढूंढने गए अपने रिश्तेदारों में, उन्होंने उसे रिश्तेदारों में नहीं पाया, तो फिर उसे उन्होंने कहाँ पाया? ठीक वही जहाँ उन्होंने उसे छोड़ा था। और मैं सोचता हूँ कि हमारी कलीसिया इस महान संस्था के फजूल खर्च को लिए हुए है जो हमारे पास था, एक दूसरे को हरा रहा है, और बड़ा आराधना स्थल होना ही है, और अच्छे स्तर के लोग, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, और अच्छे गायक और वहाँ खड़े हों, और मुझे अच्छे गाने पसंद हैं, मुझे अच्छे पुराने पेंटिकॉस्टल गाने पसंद हैं, परंतु मैं बनावटी में टिक नहीं सकता। बस ये मेरे साथ नहीं चल सकता कि आप तब तक खींचते रहें कि चेहरा नीला हो जाए। बहुत कठिन है। मैं हृदय से गाए हुए गाने में विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के आत्मा में, जैसा मैं थोड़ी देर पहले सुना, समझे। मुझे पुराने तरीके का चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं सोचता हूँ चिल्लाना जारी रह सकता है यदि संगीत चलते रहा ना चले। परमेश्वर का आत्मा लोगों पर ये परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य नीचे लाता है। मैं विश्वास करता हूँ मनुष्य गवाही दे सकता है, गा सकता है, स्तुति कर सकता है, अपने अपने कार्य स्थल पर जहाँ कहीं भी वे हैं सच्चे हैं, और अब हम कहीं असफल हो रहे हैं, हम उसे कहाँ पाएंगे? ठीक वहीं जहाँ हमने उसे छोड़ा है, वचन में। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, इन्हीं किन्हीं रातों में हम बाइबल को अंतिम बार बंद करने जा रहे हैं। अंतिम गीत गाया जाएगा, अंतिम प्रचार प्रचारा जाएगा, अंतिम प्रार्थना पंक्ति बुलाई जाएगी, अंतिम पापी भीतर आएगा, और फिर क्या? ओ प्रिय परमेश्वर, हम आपकी अनुमति वाली इच्छा नहीं चाहते पिता, हम आपकी सिद्ध इच्छा में चलें। हम इधर उधर से वचन लेकर किसी भी धर्म सिद्धांत में या किसी मतसार में या किसी चीज में उसको सही ना बैठा लें। हम वचन को जैसा है वैसा ही लें, पूर्ण सुसमाचार का विश्वास करें, वो सब जो यीशु ने हमें करने के लिए सिखाया है। हम विश्वास नहीं करते कि प्रेरितों के कार्य एक ढांचा है, हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके पवित्र आत्मा का कार्य प्रेरितों में है, और हम विश्वास करते हैं कि वही पवित्र आत्मा प्रभु जो उन पर आया और जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया, ये वही चीजें हमें करेगा जब ये हम पर आता है, यदि ये वही आत्मा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये बेदारी सभा जिसके समय पर हम हैं कि कल रात्रि आरंभ करें, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग पिता कि ये एक महान बेदारी सभा होगी जो इस नगर में कभी हुई आपकी उपस्थिति के कारण। प्रत्येक वक्ता को आशीषित करें, ओ परमेश्वर, होने पाइए इतना हिला देने वाला हो कि परमेश्वर का क्रोध प्रचार मंच पर गरजे, पापी हिल जाए कांपे, और यीशु मसीह की उपस्थिति लोगों पर इतनी वास्तविकता में आए कि वे अपनी आंखें बंद करके कर सकें और उसे अपने मध्य में चलते हुए देखें। प्रभु से प्रदान करें। अब आज रात्रि इसके पहले ये घटित हो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रिय परमेश्वर, हमारे कुछ बालक बीमार हैं, वे घायल हुए और उनके चोटें आईं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने को आया हूँ। जो मैं आपसे मांगूंगा, क्या आप उसको सम्मानित करेंगे आज रात्रि? प्रभु, उनकी बीमारी के लिए मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि सभा समाप्त होने पर इसके बाद भवन में एक भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। यहाँ आपके सारे के सारे सेवक बैठे हैं, चिल्ला और अपने हाथों को उठा रहे हैं, और यहाँ पीछे मंच पर और वचन को आमीन कर रहे हैं। ता हम लोगों की एक इकाई है, हम संसार से बाहर निकल कर आए हैं उन ठंडी औपचारिक स्थितियों में से, और हम आत्मा से जन्मे हैं। आज रात्रि हम जीवित हैं, और आपने कहा क्योंकि आप जीवित हैं तो हम भी जीवित थे, और हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और अपने पूर्ण हृदय से विश्वास कर रहे हैं वचन के अनुसार कि हमारा प्रतिनिधित्व आप में है। अब अपने वचन को वास्तविक बनाएं, आज रात्रि बीमारों को चंगा करें, जैसे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये दूसरे प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रदान करें, ये ऐसा होगा, और इसके लिए हम आपकी स्तुति करेंगे। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम अनुभव करते हैं जैसे कि बाइबल में एक बार वे संकट में उठ खड़े हुए और प्रभु का आत्मा एक मनुष्य पर उतरा और उसने उसको बताया कि शत्रु को वहाँ हराना है, कहाँ जाना है। इसे सुनिए, बस स्वयं को ठीक करें। देखिए, जीवन का आत्मा आप में है, आपको वचन में सही करता है। देखिए, यदि वचन आप में जीवित है तो ये स्वयं में वचन में होकर जीता है। अब पिछली रात्रि मुझे देर हो गई। आप ऐसे अच्छे लोग हैं, मैं ऐसे लगते हैं, और जैसे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं किसी दूसरे देश में आपके साथ सदा रहूंगा। इसलिए अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब मैं यह यत्न करने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग एक बार मैं ना बुलाऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली रात्रि किया। और अब बिली पॉल ने ढेर सारे प्रार्थना पत्र बांट दिए हैं, मैं समझता हूँ 100 के आसपास। क्या तुमने 100 या 200 वो क्या थे? सी, किसके पास सी नंबर एक है? अपना हाथ उठाएं, हम देखें यदि ये सही है। अब प्रार्थना पत्र अपने कार्ड पर देखें, इस पर एक नंबर है और एक अक्षर है, सी नंबर एक। अपना हाथ उठाएं, वहाँ ठीक है, यहाँ आ जाएं। नंबर दो, तीन, चार, पाँच, अब और आप कोई और यहाँ पर हैं, और इन्हें पकड़ें। अब हम चाहते हैं कि हर एक जिसके पास प्रार्थना पत्र है, परंतु हम चाहते हैं कि वो यहाँ इस और पंक्ति में बना लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, मैं उन तीनों को देखता हूँ। और श्रीमान, आपका प्रार्थना पत्र चार, अब वहाँ दूसरा वाला पाँच, क्या वो व्यक्ति जो वहाँ आ रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, सी नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, अब वैसे ही आए जैसे बुलाए जाते हैं आपके नंबर। इसलिए पिछली रात्रि मैंने उन्हें वहाँ देखा, लोग भीड़ लगा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, ये आराधनालय है, आप जानते हैं, तमाश घर नहीं। इसलिए आपको व्यवस्था बनाए रखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, अब जैसे ये पीछे जाते हैं इनकी पंक्ति बनवा दें। अब प्रार्थना पत्र छः, सात, आठ, नौ, दस, और कोई इनके हाथ पकड़ ले जब वे आते हैं, जब वे वहाँ पंक्ति में आते हैं, और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब कितने मेरे साथ ये विश्वास करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु एक महान कार्य करने जा रहा है? जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। अब छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, अब जरा इधर को आ जाएं ताकि वे एकदम भीड़ न लगाएं। अब जानते हैं इसके चारों ओर, यही जिसके लिए जो नंबर आपको दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। अब जानते हैं, ऐसा बनाए रखें, ये नहीं होगा, तब जब आपका नंबर पुकारा जाए तो आप बस आ जाएं। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब कोई, हर कोई अब वास्तव में श्रद्धा में हो, और अब लगभग प्रार्थना में होंगे जब तक इन लोगों के लिए प्रार्थना न हो जाए। हम नहीं जानते कि प्रभु क्या कर सकता है, हम नहीं जानते वो क्या करेगा, परंतु हम आशा कर रहे हैं कि वो महान चीजें करेगा। अब मैं विश्वास करता हूँ, 15, क्या मैंने वहाँ इतने अभी ले लिए हैं? बिली पॉल, तुम कहाँ हो? ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब देखिए ये पहले ही जमघट लगाए हुए हैं। इसलिए मैं अब संभवतः किसी भाई को लेने जा रहा हूँ, जैसे कि वे पंक्ति के अंत में आए तो वो अगले नंबरों को बुला लें, इसलिए ताकि हम सबको देर तक खड़ा नहीं रख सकेंगे जबकि हम प्रार्थना कर रहे हैं इन बीमारों के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जबकि वो लोगों को बुला रहे हैं ताकि वे आपस में झुंड ना बना लें। अब जब तक आपका नंबर ना पुकारा जाए कोई भी नहीं आएगा। हमने 15 तक बुलाए हैं, मेरा विश्वास है, या 20 थे, कुछ वहां थे, मैं 20 तक कहूंगा, और फिर हम प्रतीक्षा करें, और ये वहां पर्याप्त होंगे इस समय जितने भी वहां हैं। अब कितने कार्ड हैं? अपने हाथ उठाएं, और कितनों के पास कार्ड नहीं है अपने हाथ उठाएं। अब स्मरण रखें, आपके पास अवश्य नहीं कि प्रार्थना पत्र होना ही है। हम यहाँ पर दो रातों से हैं, और प्रत्येक रात्रि पवित्र आत्मा भक्त मंडली पर गया और लोगों को चंगा किया, और प्रार्थना पत्र से मतलब नहीं, क्या ये ठीक बात है? प्रार्थना पत्र आपके लिए केवल एक कार्य कर सकता है कि पंक्ति में आने के लिए आपकी सहायता करे, ये ठीक बात है, परंतु आपके पास विश्वास है और आप देखें पवित्र आत्मा मन से निकल गया है और ठीक वहाँ और वहाँ भक्त मंडली के मध्य में है। कितने जानते हैं कि ये सच बात है? अब मैं विश्वास करता हूँ, पक्की तौर से विश्वास करता हूँ कि यदि कोई और कलीसिया है पेंटिकॉस्टल कलीसिया को छोड़कर जिसके साथ मैं चल सकता और विश्वास करता कि मैं इसके साथ रहूंगा, यदि मैंने सोचा कि वहाँ कुछ भी अच्छा था। और जब आप मुझसे ये कहते सुनते हैं कुछ संस्थाओं के विषय में और इस प्रकार की बातें, मैं लोगों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि क्या हो यदि आप एक ऐसे मनुष्य को जिससे आप प्रेम करते हैं नाव में चढ़ा हुआ झरने की ओर बहता जा रहा है और जानते हुए कि नाव उसके साथ डूबने जा रही है, और आप कहते हैं भाई मैं उससे प्रेम करता हूँ, परंतु ये उसका अपना मामला है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझ में नहीं है। मैं चिल्लाऊंगा, भागूंगा, उसे पकड़ लूंगा, उसे हिलाऊंगा, झटकूंगा या ऐसे ही कुछ कि उसे वहां से बाहर निकाल लूं। और मैं जानता हूं कि झरने में नहीं तैरेगा। ये ठीक बात है, इसे मसीह के पास वापस आना ही है, जैसे कुछ निश्चित है। इसे परमेश्वर के पास वापस आना ही है। अब मैं यहाँ जितने हैं, इससे पहले कि मेरी सभाओं में थे, क्या ये ठीक बात है? अपने हाथ ऊपर रखें यदि आप सभाओं में थे। ठीक है, क्या कोई नया आया है जो पहले मेरी सभाओं में नहीं था? अपने हाथ ऊपर करें। अच्छा, क्या आप? मैं कभी नहीं। क्या ये पहली बार है कि आप मेरी सभा में हैं? फिर से अपना हाथ उठाएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं अच्छा हो कि मैं इसे बदल दूं। अच्छा होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जो अभी आए हैं, मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं कुछ और अधिक समय लगेगा, मैं इसकी व्याख्या करूँ, क्योंकि आप लोग गलत प्रभाव के साथ जाएंगे। मैं परमेश्वर के हर कार्य में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में वहाँ फिर से आने वाला है, कलीसिया में फिर से वही पद्धति आने वाली है जब यीशु छोड़ कर गया था। देखिए, ये दूल्हा है, इसे उसी स्थान पर ही आना है। देखिए, हम परमेश्वर के महान कार्यों में से होते हुए आए हैं, न्यायोचित पवित्रकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वरदानों की वापसी। परंतु अब्राहम के वंश में, अब मैं अनपढ़ और इसलिए मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान कुछ उपयोग करना होगा। वो भी अनपढ़ था, वो जंगल में था जब वो नौ वर्ष का था, और उसने कभी शिक्षा नहीं पाई, इसलिए उसका उपदेश अधिकांश प्रकृति पर आधारित होता था। ओ तुम सांप के बच्चों, देखिए सबसे खराब चीज जो उसने देखी, और इतने चालाक कि उसने उन याजकों को सांप कहा। उसने कहा, तुम सांप के वंश, तुम्हें किसने चेताया कि आने वाले क्रोध से भागो? ये मत कहो कि हमारे पास ये है, हम इससे हैं। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से, यही जो उसने नदी के किनारे पर देखा, अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए, और ये भी कि कुल्हाड़ा, यही जो जंगलों में प्रयोग होता है, पेड़ की जड़ पर रखा है, और हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा। वो यही जलाता और इसी से जलाने की लकड़ी लेता, आपने देखा। परंतु अच्छे पेड़, उसने अपना उपदेश ऐसा ही बनाया। इसलिए इसमें मैं भी इसी रीति से कहना चाहता हूँ, हम अंत के समय में हैं, कटाई का समय। अब अब्राहम की यात्रा में वो परमेश्वर से भिन्न भिन्न रूपों में मिला और आदि आदि, जिसको कि हम लेकर और इसे दर्शा सकते हैं। हम बस अब्राहम के वंश हैं यदि हम मसीह में हैं, और वास्तव में इसहाक उसका लघु पुत्र था, वो उसका मैथुनिक पुत्र था, परंतु आत्मिक मसीह अब्राहम का वंश था, उसका राजकीय वंश, उसका विश्वास। अब हम पाते हैं कि उसका शाही वंश उसी प्रकार से यात्रा करता है जो कि मसीह की दुल्हन उसी प्रकार की यात्रा करती है जो अब्राहम ने की। और अंतिम चिन्ह जो अब्राहम ने देखा इसके पहले की प्रतिज्ञा का पुत्र आए, वो जब परमेश्वर मनुष्य की देह में प्रकट हुआ और दो स्वर्गदूत नीचे आए। यीशु ने संत लूका 17वें अध्याय में कहा और 30वां पद कि जैसा ये नूह के दिनों में था, उसने नूह के समय की बात बताई और कहा, और जैसे सादोम के दिनों में था, देखिए उसका आगमन ऐसे ही उन दिनों में होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। अब उसने ये कभी नहीं कहा परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो रहा होगा, मनुष्य का पुत्र। अब यीशु तीन नामों में आया, मनुष्य का पुत्र जो कि भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का पुत्र जो कि कलीसिया में होते हुए निकला, दाऊद का पुत्र। परंतु परमेश्वर के पुत्र और दाऊद के पुत्र के बीच, उसके वचन के अनुसार, मलाकी 4 के अनुसार, और बहुत से पवित्र वचन, उसे अपनी कलीसिया में वापस आना है, शारीरिक रूप में, लोगों में, मनुष्य के मध्य में, भविष्यद्वक्ता के तरीके में होते हुए, समझे। अब देखिए इस मनुष्य ने क्या किया जब वो अब्राहम से मिलने को आया। पहली बात, उसने अब्राहम को उसके नाम के बदलने के विषय में बताया, क्योंकि उसने उसे अब्राहम कहके नहीं बुलाया, उसने उसे अब्राहम कहकर पुकारा। और जब उसने किया, क्यों हम ये पाते हैं कि उसने कहा तेरी पत्नी सारा, SARAH, SARRA नहीं, क्यों? उसने कहा वो आपके पीछे तंबू में है। अब उसने कहा वो 90 की थी और अब्राहम 100 का था, और उसने कहा मैं प्रतिज्ञा के अनुसार तुझसे मिलने वाला हूँ जीवन के समय में। और सारा भीतर उसको सुना तंबू के पर्दे में से, और वो अपने में हंसी, और सरदूत मनुष्य वहाँ बैठा हुआ है बोला, पीछे उसकी आत्मा को जांच लिया उसके पीछे की ओर और बोला, सारा तू क्यों हंसी इन बातों के विषय में? भाई उन्होंने सारा से बोला, और उसने इस बात का इनकार किया। उसने कहा परंतु तूने ये क्या किया, वो डरी हुई थी। अब यीशु ने कहा परमेश्वर के पुत्र के आने से जरा सा पहले या पुत्र दूसरा आगमन कि ये युग जिसमें हम जी रहे हैं वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया और भविष्य दखता क्योंकि ये पवित्र वचन को पूरा करता है। मूसा ने कहा प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्य दखता उठा खड़ा करेगा। हम ये सब जानते हैं कि वो यीशु था, क्या हम नहीं जानते? इसलिए उसे वचन के अनुसार ही आना था, एक भविष्य दखता। उसने स्वयं को कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा। परंतु अब वो है, अब कलीसियाई युगों में होते हुए वो परमेश्वर का पुत्र है। सहस्र शताब्दी में वो दाऊद का पुत्र होगा, दाऊद के सिंहासन पर बैठा हुआ। परंतु इस समय के बीच में हम वचन द्वारा पाते हैं कि उसे स्वयं को एक बार फिर मनुष्य के पुत्र में प्रकट होना है, एक भविष्यद्वक्ता। क्योंकि प्रभु का वचन केवल भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है, धर्म विज्ञानियों के पास कभी नहीं, ये भविष्यद्वक्ताओं के। और प्रभु ने कहा उसने कुछ नहीं किया अपने न बदलने वाले वचन जिसके विषय में हमने बात करी जब तक कि वो पहले वो अपने नबियों को न दिखा दे। और अंत का समय वे सात मोहरें जो इस बाइबल में मोहरें बंद थी, सारा वो मसीह का सात सतीह भेद पहले प्रकट होना था और ये केवल नबी के पास लाया जा सकता है। हम वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और हम विश्वास करते हैं कि अब उसका आत्मा हमारे बीच में है। इसलिए हम पाते हैं, अब ध्यान दें, जब यीशु आया, ध्यान दें उसने क्या सिद्ध किया कि वो स्वयं वो मसीहा है, वो अभिषेक। एक दिन जब उसने प्राप्त कर लिया था, पिता नीचे उतर आया था और उसमें वास किया, स्वर्ग से पंडुकी के रूप में नीचे उतरा कहते हुए ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। इसी कारण उसने कहा मैं और पिता एक हैं, मेरा पिता मुझ में रहता है, ये मैंने ही जो ये कार्य करता हूँ, ये मेरा पिता जो मुझ में वास करता है। यूहन्ना ने ये गवाही दी, पंडुकी के समान पवित्र आत्मा को देख रहा था कि नीचे उतर रहा है, इसमें से ये आवाज आई ये कहते हुए ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, देखिए। और वो उसमें रहा। अब ध्यान दें, जब उसकी सेवकाई आरंभ हुई अब उसे मनुष्य के पुत्र के समान व्यवहार करना था। अब ध्यान दें उसने क्या किया, वहाँ एक मनुष्य शमौन पत्रस नाम का आया, तब उसका नाम शमौन था, बाद में पत्रस कहलाया। इंद्रियास यूहन्ना की सभा में भाग ले रहा था और तब जब यीशु आया और यूहन्ना ने उसका परिचय करवाया, उसने उसे देखा। इंद्रियास ने अपने भाई शमौन से कहा कि उसके साथ सभा में आए। उसे उसके पिता ने बताया था कि जैसा कि उसने कहा, एक समय आएगा इसके पहले कि वास्तविक मसीहा आएगा, वहाँ बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, ये सदा से इसी प्रकार रहा है। उसने कहा परंतु पुत्रो स्मरण रखो वो वास्तविक मसीह तुम उसे जान जाओगे क्योंकि वो वचन के अनुसार होगा, वो एक भविष्यद्वक्ता होगा। अब हमारे पास सैकड़ों और सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं है, मलाकी के समय से, परंतु बहुत से लोग दावा करते हैं जो कि हम जानते हैं कि वहाँ पर थे, वहाँ एक यीशु उठ खड़ा हुआ और एक झुंड को ले चला और आदि आदि, परंतु ये वास्तविक मसीहा एक भविष्यद्वक्ता होगा। और सारे इब्रानियों को ये विश्वास करना सिखाया गया कि जो भविष्यद्वक्ता कहता है वो सत्य होता है। तभी वो अनपढ़ मछुआरा जिसके विषय में हमें बताया गया, उसके पास इतनी शिक्षा भी नहीं थी कि अपना नाम लिख ले, बाइबल बताती है कि वो अनजान और अशिक्षित दोनों ही था। उसने उसे परमेश्वर का पुत्र है पहचाना, उसने उसे मसीहा है इस होने को पहचाना, क्योंकि वहाँ एक भविष्यद्वक्ता था, वहाँ एक था जिसने उन्हें बताया कि उसका नाम क्या है और बताया कि उसके पिता का क्या नाम था, और वो जान गया कि इसे तो भविष्यद्वक्ता ही होना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य उसे नहीं जानता था, और उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दी। और हम पाते हैं कि वहाँ कुछ खड़े हुए ये सुन रहे थे और एक फिलिपुस नाम का जिसने अपने मित्र के साथ बाइबल का अध्ययन किया था, नतेन नाम का मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए वो एक दिन की यात्रा कर पहाड़ का चक्कर लगाकर और वापस आया और उसने नतेल को अंजीर के पेड़ के तले प्रार्थना करते पाया और उसने कहा आकर देख हमने किसको पा लिया, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। इसलिए नतेल या फिलिपुस या बल्कि नतेल एक अच्छा मनुष्य होने के नाते उसने कहा क्या कोई अच्छी चीज नासरत से निकल सकती है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा बस आकर देख ले, अब ये अच्छा सुझाव है, आकर स्वयं ही देख ले, घर पर बैठकर आलोचना ना कर, आकर देख ले, वचनों में ढूंढो, तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। यीशु ने कहा ये वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। इसलिए वापसी के मार्ग पर कोई संदेह नहीं कि उसकी थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसने उसे बताया कि तू उस बूढ़े मछुआरे को जानता है जो मछली के भुगतान पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था उस दिन, वो मछली जो तूने उससे ली। उसने उसे बताया तू जानता है कि उसका पिता वो जो आराधनालय में था उसका नाम योना था, तुझे याद है? उसने उसे बताया कि वो कौन था। ओ, मुझे ये देखना पड़ेगा। इसलिए जब वो चला और हो सकता है वो प्रार्थना की पंक्ति में था जहाँ यीशु था, मैं नहीं जानता, वो चलता हुआ यीशु की उपस्थिति में आया। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा دیکھو ایک اسرائیلی جس میں کوئی کپٹ نہیں. اب پہلی بار میں آپ کہتے ہیں کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایک اسرائیلی ہے؟ بھائی چونکہ اس کی ویش بھوشا تھی. نہیں نہیں, سارے پوروی لوگ پگڑی پہنتے تھے, وہ ایسے ہی پہنتے ہیں. اور کہا ایک اسرائیلی ہے, اور اس نے کہا اس میں کوئی کپٹ نہیں. وہ ایک دھوٹ ہو سکتا تھا یا کچھ بھی, تو وہ بھی پرگٹ ہو جاتا. اس نے کہا اس میں کوئی چھل کپٹ نہیں. اور اس پرکار سے نتیل کا سارا روح کھاپن نکل گیا. اس لیے اس نے کہا ربی تو نے مجھے کیسے جانا؟ کیوں میں یہ نہیں سمجھ سکا؟ تو نے مجھے کب جانا؟ میں تو اس سے کبھی نہیں ملا. مجھے تو یہاں فلپس لے کر آیا, تو نے مجھے کب جانا؟ اس نے کہا اس کے پہلے کہ تو انجیر کے ورکش تلے تھا, جبکہ تو وہاں پرارتھنا کر رہا تھا, میں نے تجھے دیکھا. ہاں سمجھے. اس نے کہا ربی تو پرمیشور کا پتر ہے, تو اسرائیل کا راجا ہے. یشو نے کہا کیونکہ میں نے تجھے یہ بتایا, تو نے وشواس کیا, تو پھر تو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا. وہاں وہ لوگ کھڑے تھے. اب میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی چیتاونی دے دوں. وہاں جو وہ کھڑے تھے ربی اور یاجک, انہوں نے کہا یہ منشی یہ بال زبوب کے دوارا کرتا ہے. اور یشو نے پلٹ کر کہا میں تمہیں اس کے لیے شمع کرتا ہوں, کیونکہ ابھی چھٹکارا نہیں ہوا تھا, پرنتو کسی دن پوتر آتما آئے گا اور انہی چیزوں کو کرے گا. اس نے کہا اور اس کے ورودھ میں ایک بھی شبد بولنا, یہ آپ کا نہ اس سنسار میں نہ آنے والے سنسار میں شمع ہوگا. کنویں پر وہ استری سامری. اب پرتھوی پر تین جاتی کے لوگ تھے, ہم کالے بھورے پیلے جو بھی ہم ہیں ہو سکتے ہیں, پرنتو ہم ایک لہو سے آئے ہیں. اور تین جاتیاں ہیں جو کہ ہیم شیم اور یاپیت کے لوگ, اور یہودی انیہ جاتی اور سامری, آدھے یہودی اور انیہ جاتی. اب ہم انیہ جاتی اینگلو سیکسن, ہم مورتی پوجک تھے, مورتوں کی آرادھنا کر رہے تھے, ہم کسی مسیح کی پرتیکشا نہیں کر رہے تھے. اس لیے جب یشو نے سوئم کو منشیہ کا پتر پرکٹ کیا, دھیان سے سنیں اور میں بند کروں گا. جب یشو آیا تو اس کا کرتویہ تھا کہ وہ درشائے جو بھوشیہ دکتا نے کہا کہ وہ ہوگا. اس لیے اسرائیل کے سامنے وہ اپستھت ہوا, پترس اور نتیل اور ان لوگوں کے سامنے منشیہ کے پتر کے سامان. اب اسے سامریا سے ہوتے ہوئے جانا تھا, اور وہ سامریا جاتا ہے, اور وہاں اس نے ایک استری کو کنویں پر بیٹھے ہوئے پایا. ہم کہانی جانتے ہیں. اور جیسے کہ وہ مہیلا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, وہ پانی لینے آئی تھی, اس نے کہا مجھے پانی پلا, اور وہ بولی اب یہاں پر ایک الگاؤ تھا, ہم یہ نہیں کر سکتے, میں تو سامری استری ہوں اور تو یہودی ہے, ہمارا کوئی نہیں. اس نے کہا پرنتو یدی تو جانتی کہ تو کس سے باتیں کر رہی ہے تو تم مجھ سے پانی مانگتی. وہ بولی کنواں تو گہرا ہے, تو کس چیز سے نکالنے جا رہا ہے؟ اور وارتالاپ آگے بڑھی جب تک اس نے اس کے آتما سے سمپرک نہیں کیا. اور جب اس نے اس کی آتما سے سمپرک کیا تو اس نے پایا کہ اس کی کیا پریشانی تھی. کتنے یہ بات جانتے ہیں؟ اب کتنے جو نئے آئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ستیہ ہے. ٹھیک بات ہے, یہ ستیہ تھا. اور اس نے کیا کہا؟ جا کر اپنے پتی کو یہاں لے کر آ. اس نے کہا میرے پاس کوئی پتی نہیں ہے. اور اس نے کہا تو نے اچھا کہا, کیونکہ تیرے پانچ پتی تھے اور اب تو جس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ تیرا پتی نہیں ہے. وہ گھومی, اب وہ ان یاجکوں کے سامان نہیں تھی کہ اس کے پاس شیطان ہے, وہ ایک بھاوی کہنے والا ہے یا ایسے ہی کچھ. وہ گھومی اور اس نے کہا شریمان مجھے پرتیت ہوتا ہے کہ تو ایک بھوشی تکتا ہے. اب ہمارے پاس پچھلے چار سے ورشوں سے نہیں ہے, کلیشیا ایسے ہی نہیں ہوا کرتی تھی, پرنتو مجھے پرتیت ہوتا ہے, مجھے پرتیت ہوتا ہے کہ تو ایک بھوشی تکتا ہے. اب میں جانتی ہوں کہ ہم مسیحا کی پرتیشا کر رہے ہیں, اور جب مسیح آئے گا تو وہ ان چیزوں کو کرے گا. اب بائبل نے کہا وہ کل آج اور سروتا ایک سا ہے. یعنی مسیح کی ابھیشت ہونے کا چن پہلے یہی تھا اس سامریان کے لیے اور یہودی کے لیے, تو یہ انیہ جاتی کے سامنے پہلے کبھی نہیں ہوا. بائبل میں کبھی بھی کہیں نہیں ہے یشو نے یہ انیہ جاتی کے سامنے نہیں کیا. ان کے پاس مسیح کی پرتیشا کرنے کے 4000 ورس تھے, ہمارے پاس 2000 ورس ان کے پرشیشن کے ساتھ ہم مسیح کی پرتیشا کرتے ہیں. اب یدی ان کے دن سماپت ہونے کے پہلے یہ پرمان تھا تو یہ ہمارا بھی پرمان, کیونکہ اس نے پرتیجیا دی ہے کہ جس دن سنسار پھر سے سادوم کے سمان ہو منشیہ کا پتر سویم کو پھر پرگٹ کرے گا. اور کوئی بھی جانتا ہے کہ ہم ایسی ہی استھتی میں ہیں, سمجھے. اب میں وشواس کرتا ہوں کہ یشو اپنا ہر وچن پورا کرتا ہے, سارا پوتر وچن پریرت ہے. میں وشواس نہیں کرتا کہ ہمارے پاس ایک بھی ادھیکار ہے اور اس کے لیے دوشی ٹھہرائے گا یدی ہم اس میں سے ایک وچن ملائیں یا ایک وچن گھٹائیں. پرکاشت واقعہ 22 ایسا کہتا ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ وہ کل آج اور سدا ایک سا ہے. میں نشچے ہی ان لوتھرنوں کا ان کے دنوں میں ان کا مورچہ لینے کا آدر کرتا ہوں, میتھوڈسٹ کا پوتر کرن کے لیے ان کے دنوں میں, اور پینتیکوستل ان کا مورچہ لینا ان کے دنوں میں. پرنتو ہم دوسرے دن میں ہیں, ہم اس میں جی رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں جبکہ وہاں ڈنٹھل پشپ بلڑ छिलका लगभग गेहूं जैसे हैं, परंतु गेहूं छिलके के अंदर है। छिलके ने केवल गेहूं का समर्थन किया है, गर्म सूर्य से जलने से बचाया, और अब नामधारी इससे अलग हट रहे हैं कि ये पुत्र की उपस्थिति में रह सके ताकि पक जाए। इसलिए हम अब कोई और संस्था नहीं उठेगी, ये इसका अंत है। हमारे पास सदा लगभग 3 वर्ष, जब एक संदेश आरंभ हुआ वे इसे संस्थागत करते हैं। ये लगभग 20 वर्षों से चलता चला आ रहा है और कोई संस्था नहीं, ये नहीं हो सकता। हम गेहूं के समय में हैं, एक कटाई का समय। मैं सुन सकता हूं कि एक महान सम्मिलित होना आ रहा है। एक दिन हम घर जा रहे हैं, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। अब मैं वो नहीं हूँ, परन्तु मैं उसका एक सेवक हूँ। मैं विश्वास नहीं करता कि आप लोगों पर हाथ रखें और उन्हें वरदान दें। वरदान और बुलाहट बिना प्रायश्चित के हैं। ये पहले से ही परमेश्वर के ठहराए हुए हैं कि उस युग के समय और काल से मेल खाए। कोई भी बाइबल का सीखने वाला ये जानता है कि ये सत्य है। मूसा समय पर ही जन्मा, यरमिया समय पर, और वे बाकी सब, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समय पर, यीशु समय पर था, और हम सब समय पर हैं। यही है जो घटित होना था। अब मैं दावा करता हूं कि वो आज भी जीवित है, और उसका आत्मा कलीसिया काल के बाद हमें, हम लुदी के कलीसिया काल में हैं, अंतिम बुलाहट और उन सबसे बुरी, क्योंकि उसे कलीसिया से बाहर कर दिया था। स्मरण रखें, मनुष्य का पुत्र, और उसे कलीसिया से बाहर कर दिया गया। किसी संस्था को संस्था से बाहर नहीं, परंतु एक व्यक्ति को एक संस्था से बाहर, समझे। किसी और कलीसियाई काल में ऐसा नहीं हुआ, बस लुदिकिया में। यदि आप आत्मिक हैं तो आप समझ जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, अब मैंने सच्चाई से आपकी गवाही दे दी है। अब यदि ये सत्य है जो कि मैं जानता हूँ कि ये है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब क्षण भर में मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। मैं पंक्ति में कोई विचारों को परखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा आप सब मेरी सेवकाई में रह रहे थे, परंतु उन लोगों के लिए जो यहाँ हैं, उन कुछ लोगों को वहाँ बाहर प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और कोई पंक्ति में या ऐसे ही कुछ। और अब यीशु मसीह इस मनुष्य को ले लेगा, या आपके बिना कार्य नहीं करेगा, आप ही हैं जो ये करता है। अब सुनिए, एक दिन एक स्त्री ने उसका वस्त्र छू लिया, वो घूमा और बोला, मुझे किसने छुआ? वे सब बोले, क्यों लगता है, या पतरस ने कहा, क्यों सारी भीड़ तुझे छू रही है? उसने कहा, परंतु मुझे लगा कि मैं निर्बल हुआ, या मुझ में से सामर्थ निकली है, वर्च्यू सामर्थ है, और कहा मुझे लगा कि मैं निर्बल हुआ हूँ। और इसलिए उसने चारों ओर देखा उस स्त्री को, जब तक उसे ढूंढ नहीं लिया, और उसे उसके लहू बहने के विषय में नहीं बता दिया। और वो स्त्री, उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ठीक है, अब वो कल आज और सर्वदा एक सा है, और नया नियम इब्रानी की पुस्तक ने कहा कि ठीक इस समय वो महायाजक है, हमारे लिए बिचवाई करता है, जिसे दुर्बलताओं की भावनाओं में छुआ जा सकता है। अब यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई रोगी है? आइए, अब भक्त मंडली के लिए, मैं ये तमाशे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, ये सोचना बंद करें, याद रखें, मेरे पास आपके विचार आ जाते हैं। कितने ये जानते हैं कि ये सत्य है और इसे देखते हैं। यहाँ एक स्त्री है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मैं इस स्त्री के विषय में कुछ नहीं जानता। संभव है हमने मीलों दूर जन्म लिया और वर्षों के अंतर से, और आज रात्रि हम यहाँ खड़े हैं। हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास कोई अनुमान नहीं है। यहाँ संत यूहन्ना 4 फिर से है, एक पुरुष महिला से मिलता है। अब मैं यीशु नहीं हूँ, न ही ये वो स्त्री है, परंतु यहाँ समानता सही है। और उसने कहा, वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। अब मैं नहीं जानता, ये स्त्री के विश्वास को लेता है कि ये करे। मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु यदि अब मुझे बताया जाए कि सत्य क्या है, तो फिर परमेश्वर बाध्य है कहे ये सही है। अब मैं आपको नहीं जानता, यदि स्वर्ग का परमेश्वर, और मैंने आपको सत्य बताया है, क्या विश्वास करती हैं कि जो मैंने इस विषय में कहा वो सत्य है? आप इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? आप ये विश्वास करती हैं? मैं यहाँ बाइबल के सामने खड़े होकर किसी को भटकाऊंगा नहीं। मेरी आयु का पुरुष और जानता हो कि मुझे परमेश्वर के सामने आना है, उस न्याय पर हमें वहाँ खड़ा होना है। किसी दिन हम ये जानते हैं। अब यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा जो आप जानती हैं कि मैं उस विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, यदि कुछ भी थे आपके जीवन में कुछ होना चाहिए जो मुझे कुछ नहीं मालूम होगा, तो फिर ये कहीं अलौकिक सामर्थ्य से आएगा, और फिर ये आप पर निर्भर होगा कि आपने सामर्थ्य के विषय में क्या सोचा था। अब आप जो नए आए हैं, अब मैं अपने हाथ को रोकता हूँ। अब कृपया यहाँ आसपास में ना घूमें, क्योंकि देखिए, आप में से प्रत्येक जन एक आत्मा है जब मैं घूमता हूँ तो मैं चारों ओर से एक खिंचाव का अनुभव करता हूँ। देखिए, आप एक मनुष्य हैं और आप में आत्मा है और आप एक आत्मा हैं। यदि आप नहीं हैं तो आप मरे हुए हैं, इसलिए आप सम्मान करें एक क्षण के लिए। और ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, मैं इसकी आशा नहीं कर रहा था। आज रात्रि मैं इसके लिए कभी नहीं आया था, मैं बस रोगियों के लिए प्रार्थना करने को आया था, परंतु ये नए आए हैं। अब क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यदि प्रभु मुझे बताए कि आपकी क्या समस्या है या आप यहाँ किस लिए हैं, आपने कुछ किया है या करना चाहिए था या कुछ और, तब आप विश्वास करेंगे। ठीक है, मैं आपके आत्मा से संपर्क करने का यत्न करता हूँ। आपने देखा, यही जो मैं करने का यत्न करता हूँ। जैसे उसने कुएं पर स्त्री के संग किया, उसने स्त्री से थोड़ी सी बात की। देखिए, वो उससे पानी मांग रहा था, और मैं भी यही करने का यत्न कर रहा हूँ कि आपके विचार को पकड़ूं, आपके मस्तिष्क को पढ़ना नहीं, परंतु वैसे ही यत्न करना जैसे उसने किया, आपके विचारों को जानना। आप यहाँ पेट की दशा के लिए हैं, आपके पेट में परेशानी है, ये ठीक बात है? यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं। अब क्या आप विश्वास करते हैं? केवल यही नहीं, परंतु आप किसी चीज के लिए भूखे हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं। यदि ये सही है तो अपना हाथ हवा में हिलाएं, समझे? मैं देखता हूँ कि ज्योति वहाँ उस पार चली गई है और फिर पीछे आई। देखिए, जाएं और यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा पाएं। ये उत्तर है। आप जो नए आए हुए हैं, अब आप विश्वास करते हैं? अब आप कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए, जब वो अभिषेक आरंभ हो जाता है तो ये आगे बढ़ता है। जैसे ही वो महिला वहाँ खड़ी हुई, ठीक इस समय उसने पहचाना कि कोई चीज उसके चारों ओर है। कितनों ने वो अग्नि स्तंभ वाला चित्र देखा है? वो ज्योति वहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में, समझे? और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा क्षेत्र है, जैसे कि मैं ठीक वहाँ से इसे देख रहा हूँ। ये वहाँ उस स्त्री पर है, मैं इसे देख रहा हूँ। अब इस महिला के लिए मैं पूर्णतः अपरिचित हूँ, मैं इसे नहीं जानता, और मुझे संदेह है कि ये भी मुझे नहीं जानती, या केवल सभाओं में देखने के द्वारा बस। परंतु यदि परमेश्वर मुझे आपके विषय में कुछ बताए, या कुछ ऐसा जो थोड़ी देर पहले हुआ, क्या आप मेरा उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करेंगे, उसका सेवक? क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करेंगे? हो सकता है वो इसे प्रदान करें। आपका एक ऑपरेशन होने वाला है, और ये ऑपरेशन आपके हाथ के बारे में है। वहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु ये तंत्रिका की दिशा है आपके हाथ में। ये दुर्घटना के कारण हुआ है और इसका ऑपरेशन होना है। आप विश्वास करते हैं और आपका ऑपरेशन नहीं होगा, यदि आप बस अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करें। ओ, क्या आप विश्वास करती हैं? हाँ, अब बस विश्वास करें, संदेह ना करें, बस विश्वास करें। अब यहाँ एक और स्त्री को, क्योंकि ये स्त्री संकटपूर्ण स्थिति में है। आप ये काली छाया देखते हैं? कितनों ने कभी मृत्यु की काली छाया वाला उतरा हुआ चित्र देखा है? इस समय ये स्त्री के दाहिनी ओर है। यदि परमेश्वर इसकी सहायता ना करे तो वो जीवित नहीं रह सकती। उसको फोड़ा है और फोड़ा मस्तिष्क में है। ओ प्रिय परमेश्वर, अब यदि आप इतने समीप उपस्थित हैं जो ये सारी बातें जानता है, प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे। पिता, इसे जीवित रहने दें अपनी महिमा के लिए। मैं ये यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप कैसी हैं? आप स्वस्थ अच्छे व्यक्ति हैं। यदि माँ जीवित होती तो वो लगभग आपकी आयु की होती। मैं समझता हूँ वो महिमा में है। आज रात्रि वो सदा मेरे लिए प्रार्थना करती थी जब मैं सभा में बाहर गया। मैंने प्रभु से कहा, मामा, 85 वर्ष की आपके हृदय को आशीष मिले बहन। मैं आपके लिए पूरी तरह से अपरिचित हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी आयु में वर्षों का अंतर है और मैं आपको नहीं जानता। मैंने आपको कभी नहीं देखा। हम बस दो लोग इस पृथ्वी पर मिले हैं, परंतु आप मसीही हैं, आप एक विश्वासी हैं, क्योंकि कारण मैं ये जानता हूँ कि ये आपकी आत्मा अनुभूति है। आपने मेरा स्वागत किया है, देखिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये कार्यों को देता है और पवित्र आत्मा के व्यवहार, समझे? मैं जानता हूँ ये बातें जो हम बोलते हैं सत्य है, और मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। और मैं नहीं जानता कि क्या गड़बड़ी होगी, परंतु यदि प्रभु यीशु मुझ पर प्रकट करेगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, तो जानूंगा कि ये सही है या नहीं, या मुझे कुछ बताए जो आपने किया या जो आपको नहीं करना चाहिए। आप विश्वास करेंगे कि ये वही प्रभु यीशु है, वही परमेश्वर जो फिलिपुस को बता सकता था कि वो कहाँ पर था, शमौन को बताया कि उसका क्या नाम था। क्या आप उसका वही होने पर विश्वास करते हैं? आपकी परेशानी पेट की परेशानी है, ये बिल्कुल ठीक है, क्या ये सही नहीं है? आप मुझ पर उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं? आपका नाम श्रीमती बेयर्स, जैसे बेयर एस्प्रिन, ये ठीक बात है, आप चंगी हो गई हैं। आगे बढ़िए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपने सारे हृदय से विश्वास करते हैं, अब यदि आप में विश्वास है, संदेह ना करें। अब आप वास्तव में यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ किसी और के लिए हैं। ये एक पुरुष है और वो यहाँ नहीं है, एक भाई, वो भाई पागल संस्थान में है। उस रुमाल को लीजिए जो आपके हाथ में है, जबकि आत्मा आपके ऊपर है, इसे उसके पास भेज दें, इसे उस पर रख दें, संदेह ना करें, वो संस्थान से बाहर आ जाएगा और चंगा हो जाएगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कहते हैं, आपने कहा वहाँ वो सरदूत अंत के दिनों में उसकी पीठ घूमी हुई थी। भाई आप तो देखते हैं, मैं इस महिला की ओर नहीं देखूंगा, मैं अपनी पीठ घुमाता हूँ। अब महिला, आप जो रोगी हैं, रोगी के साथ हैं, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, यदि प्रभु यीशु मुझ पर प्रकट करेगा कि आपकी क्या परेशानी है जबकि मैं इस ओर देख रहा हूँ, आप जान जाएंगी कि ये सत्य है या नहीं। क्या ये ठीक बात है? तब क्या आप विश्वास करेंगी जो यीशु ने कहा उसे पूरा होना है, ये अंत के दिनों में किया जाएगा जैसे कि ये सदोम के दिनों में था? क्या आप इसका विश्वास करेंगे? आपको महिला वाली गड़बड़ी है, महिला वाली परेशानी, अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, ये आपको छोड़ देगा और आप घर स्वस्थ होकर जा सकती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, यदि तू विश्वास कर सके। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस हृदय रोग को चंगा करेगा? बस आगे चलते रहें, कहते रहें, धन्यवाद प्रभु, विश्वास करें। प्रातः उठते आप कठिनता से हिल सकते हैं, गठिया एक बुरी चीज है, परंतु यीशु मसीह गठिया को चंगा करने वाला है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? आप अपने कदम को एक और नियंत्रित कर रहे हैं, एक और नीचे जा रहे हैं, मैं आपको ये करते देखता हूँ। अब आपको ये और नहीं करना पड़ेगा यदि आप विश्वास करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि मुझे इस उद्देश्य के लिए भेजा गया है? तो फिर यीशु मसीह के नाम में ये महिला को छोड़ दे, आमीन। आपको पेट की परेशानी है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको घर जाने देगा? अपना भोजन खाएं, इस विषय में अच्छा अनुभव करें, अपने मार्ग पे जाएं, अपना भोजन करें, विश्वास करें, आप अच्छा अनुभव करेंगे। आपको कमजोरी है जिससे आप दबे हुए हैं, ये ठीक बात है, क्योंकि आपका हृदय खराब है, ये ठीक बात है, अब ये आपको और नहीं होगा, जाइए इसका विश्वास करें। क्या हो यदि मैं आपसे एक शब्द भी ना कहूं और बस आप पर हाथ रखूं, क्या आप मेरा विश्वास करेंगे कि ये भी आप चंगे हो जाएंगे? यहाँ आइए। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस महिला को चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ कर देंगे, यीशु मसीह के नाम में होते हुए, आमीन। यहाँ पर कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने आप में से नए आए हैं? आप सब लोग जरा सोचें, और मैं लोगों को कठिनता से आते हुए देख पा रहा हूँ। बस स्मरण रखें, एक दर्शन के कारण यीशु निर्बल हो गया, कितने ये जानते हैं। एक स्त्री ने उसे छुआ, डेनियल ने एक दर्शन देखा और वो परेशान हो गया अपने सिर में बहुत दिनों के लिए, कितने ये बात जानते हैं, समझे? ठीक है, आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि ये पवित्र आत्मा है? क्या आप इसका पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब मैं नहीं, पवित्र आत्मा। अब यहाँ एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो भी विश्वास करता है। अब कुछ आप में से कुछ अधिक लोग जिनके पास उनके प्रार्थना पत्र हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जो इस प्रार्थना पंक्ति में आने वाले हैं एक क्षण के लिए खड़े हो जाएं। देखिए, मैं आपसे एक औपचारिक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आपने अपने सारे को जो है मान लिया है? आप विश्वास करते हैं? क्या आप स्वीकार कर चुके हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे होने जा रहे हैं? आपने अपने सारे पाप मान लिए हैं और सारी गलतियों को ठीक कर लिया है? अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के सामने, यदि आपने कर लिया है, आप ये विश्वास करते हैं। अब अपने उठे हुए हाथों के साथ, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये पवित्र आत्मा को लेता है और ये पवित्र आत्मा है जो स्वयं को आपके मध्य में प्रमाणित कर रहा है? क्या आप ये अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आप करते हैं तो फिर आप में से हर एक चंगा हो सकता है। अब क्या आप इन सेवकों पर जो यहाँ बैठे हैं विश्वास और भरोसा कर सकते हैं? क्या आप इन लोगों का भी विश्वास करते हैं? कैसा हो, हम आपके लिए प्रार्थना करें प्रत्येक के लिए, और फिर आप आएं और आप पर हाथों को रखें। ये मुझे दुर्बल कर देता है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है, ये बस मुझे। और इसके बाद मैं दक्षिणी अफ्रीका जा रहा हूँ। ओ प्रभु, अब जानते हैं कि वहाँ कैसा है, जहाँ आप लोगों से बात भी नहीं कर सकते, और वहाँ होगा, हम वहाँ कम से कम 3 लाख की आशा कर रहे हैं एक ही सभा में। इसलिए आप बस विश्वास करें, आप यहाँ अमरीका में है, आपने यहाँ सब कुछ देखा है। प्रिय परमेश्वर, ये लोग आवश्यकता में हैं और मैं कुछ भी नहीं जानता जो आप कर सकते हैं। पिता, इन्हें अपने वचन के द्वारा सिद्ध करें कि आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु, हमने बहुत सी महान चीजें देखी हैं और आपकी मेज पर से खाया है, ऐसे स्वादिष्ट अद्भुत अनंत जीवन का भोज, जब तक कि हम ना हो जाए और इसकी आदत ना पड़ जाए, ये साधारण चीज ना हो जाए। हम नहीं प्रभु, हम सही प्रकार से इसके पास नहीं आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ तक कि मैं अपने लिए यहाँ खड़े हुए सोचता हूँ, मुझे अपने घुटनों पर होना चाहिए, ये जानते हुए कि वो आत्मा जिसने उसे मरुभूमि में से जिलाया ठीक यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो आत्मा उस पर था जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, अब ठीक यहाँ पर है, और हम बेचारे अयोग्य पापी, उसके अनुग्रह और दया के द्वारा उसने हमारे जीवनों को मोल लिया है, और आज हम यहाँ पर हैं उसके कामों को साथ लिए हुए, जैसा कि उसने कहा, हम उसके कामों पर चलेंगे, वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। इन बातों की प्रतिज्ञा की है और उन्हें सिद्ध कर रहा है यहाँ इस संसार में। प्रभु, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि मैं आपके लोगों के भाग में गिना गया हूँ इस अंत के दिनों में। प्रिय परमेश्वर, ये लोग खड़े हुए हैं, पिता ये लोग बीमार हैं, इन्हें चंगा करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है और न ही आपके पास, आप इन्हें पहले ही चंगा कर चुके हैं, आप हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए और आपके कूड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जो यहाँ से निकलता है, जबकि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इस प्रकार से आएंगे जैसे कि वे अब क्रूस के नीचे से निकल रहे हैं, क्योंकि वे बिना किसी संदेह के जानते हैं प्रमाणित पवित्र आत्मा यहाँ मंच पर है, परमेश्वर का अभिषेक यहाँ सभा में है। हर पाप को क्षमा कर दें, हर अविश्वास को दूर कर दें और होने पाए इनमें से प्रत्येक चंगा हो जाए जब वो यहाँ पंक्ति से निकलता है। यीशु मसीह के नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। हाँ ठीक है, अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप भाई लोग यहाँ मेरे साथ खड़े होंगे? आप देखते हैं इस विषय में यहाँ एक बात है, शहर में बहुत सारे प्रचारक जाते हैं और वे सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और वे बाकी सब, और जब भक्त मंडली, जब ये सब हो जाता है, लोग केवल प्रचारक के चारों ओर घेरा डाल लेते हैं। लोगों, ये ऐसा नहीं है, ये लोग, मुझे संदेह है इस युग में कोई भी, मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सी नकलें हैं, परंतु मैं नहीं कहूँगा कि क्या चल रहा है, परंतु ये लोग वो नहीं कर सकते, ये सच बात है और मुझे इस पर पूरा संदेह है, परंतु ये बस परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए हैं कि बीमारों पर हाथ रखें, जैसे मैं या कोई भी, परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर वैसे ही देगा जैसे वहाँ की कोई भी प्रार्थना। यीशु ने प्राधिकार दिया है, ये चिन्ह विलियम बर्नम के होंगे, ओरल रॉबर्ट आदि आदि, ये विश्वास करने वालों के होंगे, और ये लोग परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, ये बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं उसी आत्मा से, वो आत्मा यहाँ था, उन्हीं कार्यों को कुछ क्षणों पहले कर रहा था, वो अब भी यहाँ पर है, वो इनमें से प्रत्येक मनुष्य पर है और ये सब इससे भरे हुए हैं। इसलिए मैं इनसे कहने जा रहा हूँ कि यहाँ दो पंक्तियाँ बना लें, इस पंक्ति के इस ओर यदि वे करेंगे, ताकि वे अपने हाथ बीमारों पर भी रख सकेंगे जैसे कि वे यहाँ से निकलते हैं, और वे चाहते हैं कि वे जिनके पास प्रार्थना पत्र है खड़े हों, केवल प्रार्थना पत्र, कि यहाँ गलियारे में खड़े हो जाएं और आप बाकी प्रार्थना करें, अब कुछ ही मिनटों के लिए हर भाग में से खड़े हो जाएं, अपने भाग के बाएं ओर खड़े हो जाएं, अपने भाग में खड़े हों और फिर वे आपको बुलाएंगे। जब आप देखें कि ये पंक्ति यहाँ समाप्त हो रही है तो ये पंक्ति इसमें आ जाए, जब ये पंक्ति समाप्त हो तो ये वाली इसमें आ जाए, और जब आप आते हैं तो स्मरण रखें, आप तभी चलेंगे जब तक कि आप विश्वास नहीं करते। आप में से कितने जानते हैं कि आप अपने हृदय में अनुभव करते हैं कि इस विषय में आप प्रार्थना में से होते हुए निकलते हैं, और जैसे ही आप यहाँ से होते हुए निकलते हैं आप चंगे होने जा रहे हैं, अपने हाथ उठाएं, कहें मैं इसे इसी समय स्वीकार करता हूँ मसीह, क्योंकि आपने इन चीजों को प्रतिकार दिया है। अब मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मैं बहन रोज या जो कोई भी है उससे कह रहा हूँ कि यहाँ ऑर्गन पर बहन रोज कृपया क्या आप बजाएंगी, महान वैद्य अब यहाँ पर है हमारे लिए, और लोग और सारे लोग प्रार्थना में रहें, और जैसा कि ये प्रार्थना पंक्ति में से होकर निकलते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक चंगा होने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बाकी आप अपने सिरों को झुकाए रहें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वास्तव में सच्चे रहें। देखिए इस प्रकार से ये छोटा बैप्टिस्ट प्रचारक पवित्र आत्मा पाता है। उस रात्रि वो इसके विषय में सोच रहा था, वहाँ बड़ी वास्तविक निष्ठा से बैठा है और ये सारे झुंड पर उतर आया। आपको परमेश्वर के साथ सच्चा होना है। अब उसने सिद्ध कर दिया है कि वो यहाँ आपके साथ है, वो यहाँ पर है। अब जब कोई आपको बताता है कि ये बस एक उत्तेजित लोगों का झुंड है, आप इसे अच्छा जानते हैं, या आप जो नए आए हैं, उसने अपने आप को प्रकट किया है कि वो ये है, और कोई ये नहीं कर सकता। ये प्रेरितों के दिनों के बाद फिर नहीं किया गया। ये अब फिर कलीसिया में वापस आया है जैसे प्रतिज्ञा की गई थी। अब प्रभु आपको आशीष दे। अब आप लोग जैसे कि इस पंक्ति में से होकर निकलते हैं, प्रार्थना करते हुए आए। अब हर एक वो महान वैद्य अब समीप है, सहानुभूति रखने वाला यीशु। अब जब आप अपने झुके हुए सिरों के साथ श्रद्धा में आते हैं और निकलते हैं, ये लोग आप पर हाथ रखेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। स्वर सराफीम, ये ठीक है। कल रात्रि बस एक साधारण सी बात, आज्ञाकारिता की, जो परमेश्वर ने कहा करें, मैंने इसे बहुत बार होते हुए देखा है। देखिए, वचन हमें इस बात की भी आज्ञा नहीं देता कि लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसमें बस इतना है, बीमारों पर हाथ रखें तो वे चंगे हो जाएंगे। हाल ही में मैं नहीं कहता कि हाल ही में ये घटना मेरे मस्तिष्क में है, ये लगभग 3 या 4 वर्ष पहले की है या अधिक। हम ठीक यहाँ कैलिफोर्निया में थे, 2 महिलाएं वहाँ आई, उनमें से एक के चेहरे पर मांस बढ़ा हुआ था और दूसरी वाली को पेट में परेशानी, और उन्होंने ऐसा विश्वास किया। मैंने अपना हाथ उन पर रखा और कहा, मैं ये प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ। ये लगभग 1 महीने की बात की बात है। वो महिला खाने की कोशिश कर रही थी अपनी पेट की उस परेशानी के साथ, वो ये नहीं कर सकी। एक सुबह एक ठंडा सा उसे अनुभव हुआ और उसने कहा, वो खाने के लिए चली गई और वो अपने पड़ोसियों को बताने के लिए भागी, और उसके पड़ोसी चादर झाड़ रहे थे इस प्रकार से, और उस बढ़े हुए मांस को उसके मुंह पर ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उसके चेहरे पर से उस रात्रि हट गया था। देखिए मित्रों, बस विश्वास करें, यदि वो एक के लिए करता है तो वो सब के लिए करेगा। हाथों का रखना ये एक साधारण सी बात है, और उसने यही करने को कहा है। हम नहीं जानते कि ये कैसे कार्य करता है, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है, ये तो बस उसकी प्रतिज्ञा है, उसने कहा और वो करेगा। और सारे संसार में मैंने हजारों लाखों लोगों को देखा, वे चंगे हो गए। परमेश्वर ने ये करने की प्रतिज्ञा दी है और ये उसकी प्रतिज्ञा है। देखिए, हम बस विश्वास करते हैं। अब हम सब यहाँ आ रहे हैं, और आप जो उठ नहीं सकते यहाँ पास की ओर आ जाएं, और हम आपके लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक यहाँ से दाहिनी ओर जाए, यहाँ अपने हाथ रखते हुए, यदि आप चाहे यहाँ से होते हुए, और मैं यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, और फिर आकर उन पर भी हाथ रखूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ जाएं, आप सारे पास पास आ जाएं, ताकि हर कोई यहाँ पहुँच सके। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इनमें से कुछ बीमार अपाहिज हैं, वहाँ प्रभु उन सेवकों के हाथ एक दूसरे के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कि आप प्रत्येक को चंगा करेंगे। पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतरे प्रत्येक पर पिता, और उन्होंने पाए कि परमेश्वर की महान सामर्थ्य इनके ऊपर छा जाए और ये चंगे होकर घर जाएं। ये जानते हुए कि यीशु ने कहा, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, आपने ये कहा है, हम इसका विश्वास कर रहे हैं। हम इसका विश्वास कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा कहा है, और हम जानते हैं कि ये ऐसा ही है, इसलिए ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबको आशीषित करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा हृदय आप सब के लिए चंगाई को स्वीकार करता है। मैं ये विश्वास करता हूँ, क्या आप इसका मेरे साथ विश्वास करेंगे? अब आप में से हर एक यही है, मैंने आपको सत्य बता दिया है जितना भी मैं जानता हूँ, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप स्वस्थ होने जा रहे हैं, और होने पाए मेरी आशीषें आप में से हर एक के साथ हों। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखे और आपकी रक्षा करे। आप मेरी प्रार्थनाओं में हैं। क्या आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? जब मैं इस प्रकार से अफ्रीका में होता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे कल रात्रि मिलूंगा।